श्री वृंदावन बिहारी की जय। श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हिंदी में बोल रहे ना। तो आज के इस पवित्र पावन पर्व पर महामहोत्सव पर आप सबका स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको हार्दिक बधाई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। भक्तों के लिए बड़े आनंद का दिन है श्री कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव। और वैसे देखा जाए तो भक्तों के जीवन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर रोज आती है। जिस दिन जिस समय हमारे हृदय के आंगन में श्री कृष्ण नाम और श्री कृष्ण स्मृति का उदय होता है उस समय जन्माष्टमी होती है। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का एक तिथि भी है और एक पर्व भी है जिससे हम बहुत आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस दिन का प्रयोजन यह है कि हमारे हृदय में जो भी भक्ति का अंकुर अभी खिला हुआ है अगर खिला हुआ है तो उसको वृद्धि करने के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आज के दिन का व्रत, जैसे हमारे आचार्य बताते हैं माधव तिथि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, एकादशी, रामनवमी, जैसे इन तिथियों का पालन करने से भक्ति की हृदय में वृद्धि होती है। इसलिए सब भक्तगण इस दिन में व्रत करते हैं और व्रत करके श्री कृष्ण का चिंतन, श्री कृष्ण की स्मृति अधिक तीव्रता से कैसे प्राप्त हो जाए इसके लिए प्रयत्न करते हैं। तो आज के दिन का प्रयोजन, उद्देश्य, लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम सब मिलकर अपनी श्री कृष्ण स्मृति को परम चरम स्थान पर लेके जाएं और क्षण क्षण और पल पल और लव लव तक हमारा स्मृति जो है वो श्री कृष्ण के चरणों में विराजमान हो। यही इस उत्सव का उद्देश्य है। जैसे हम डेकोरेशन कर रहे हैं, ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं और यात्रियों को या मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रसाद नहीं पा रहे हैं ये सारी चीज़ें हमें अपने आप को, मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाने के लिए और उस तरह से भगवान की स्मृति को, भगवान के चिंतन को बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया गया है। उत्सव का उद्देश्य एक ही होता है कि हम भगवान की स्मृति में प्रगति करें, भगवान की स्मृति की आदत में प्रगति करें, भगवान की स्मृति की आदत और मजबूत करें। क्योंकि अंतिम जीवन का लक्ष्य क्या है? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतिम क्षण में हमको सबको भगवान को याद करना है। हम केवल उस समय प्रयास करके उनको याद नहीं कर सकते हैं जिसमें जीवन भर हमने अपना दिल लगाया है, अपनी ऊर्जाओं को उस ओर प्रस्तुत किया है, उस ओर समर्पित किया है, तो ही हमें अंतिम क्षण में वही याद आएगा जो हमारे चेतना में सबसे ऊपर है, वही उस समय याद आएगा। अगर चेतना में पैसा सबसे ऊपर है तो पैसा ही याद आएगा, अगर चेतना में शरीर का भोग सबसे ऊपर है तो शरीर का भोग ही याद आएगा, और अगर चेतना में भगवान कृष्ण की स्मृति और भगवान कृष्ण का चिंतन सबसे ऊपर है तो मृत्यु के समय वही याद आएगा। ऐसे कहते हैं ना कि हम क्या हैं, अगर हमको अपनी पहचान अपने आप को और किसी और को देनी है, और जो अपने आप बारे में अपना जो भ्रम है उसको निकालना है, और दूसरों को, दूसरों का हमारे बारे में जो भ्रम है उसको निकालना है, तो क्या करना चाहिए? जैसे ही हम अपने आप को तनाव में पाते हैं, और तनाव में हम क्या हैं, वो वास्तव में हम हैं। यू आर व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस, व्हाट एवर यू आर। जब तनाव होता है ना, कोई स्ट्रेस होता है, कोई संकट आता है, तो सब हमें कैसा व्यवहार करते हैं वो हम स्वयं, हमारी पहचान है। स्ट्रेस इज द प्रूफ और स्ट्रेस इज द मीन्स टू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर। तो जब तनाव में श्री कृष्ण की याद आती है तो वो हमारी पहचान है कि हम भक्त हैं। अगर तनाव में कुछ और, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर याद आता है, तो उसका प्रकट होता है, तो वही हम हैं। इसलिए अभी सारे तनावों में जो जिंदगी में हमारे आ रहे हैं, सारे तनाव में हमको अभ्यास करना है कि हम श्री कृष्ण की याद आएं। हमारे परम पूज्य प्रिय भक्ति तीर्थ महाराज कहते थे कि हमको एक मधुर फल की तरह होना चाहिए, जैसे कि ऑरेंज है ना, ऑरेंज के आप उंगलियों से दबाओ, मशीन से दबाओ, पत्थर से दबाओ, या सुई से दबाओ, या मिक्सर में डालो, वो क्या करता है, आपको केवल ऑरेंज जूस देता है ना। मतलब ऑरेंज को आप किसी भी प्रकार के स्ट्रेस में डालो लेकिन वो आपको ऑरेंज जूस ही देगा। वो कहते हैं भक्त लोगों को ऐसे होना चाहिए, ऐसा मधुर फल होना चाहिए, हमको बनना चाहिए प्रयास से कि कोई भी स्ट्रेस आएगा, कोई भी तनाव आएगा, जिंदगी में संकट आएगा, तो भी उसमें से कृष्ण प्रेम ही उभरना चाहिए। कितनी सुंदर बात बताई उन्होंने। हालांकि बताना आसान है, प्राप्त करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर पता है तो हम उस लक्ष्य के लिए प्रार्थना जरूर कर सकते हैं भगवान से। तो यही कृष्ण भावना का सार है कि हमें प्रयास करना है कि आज अगर दबाया जाए तो क्रोध आता बाहर निकलता है, लेकिन कल अगर दबाया जाए तो प्रेम निकलना चाहिए, और ज़्यादा प्रेम निकलना चाहिए। जैसे ब्रिजवासियों का होता है ना, उनको श्री कृष्ण भगवान, एक्चुअली उनकी वजह से ना इंद्र की पूजा कैंसिल हो गई और गोवर्धन की पूजा की गई, तो इतना बड़ा संकट आया, कृष्ण की वजह से आया, लेकिन उसके वजह से उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को कुछ बुरे भले शब्द नहीं बताए, उनको ही पुकारा बाद में भी। अगर उस जगह पर हम लोग होते तो क्या बोलते कि अरे तुम्हारे वजह से सब कुछ हुआ है, तुम्हारे वजह से तो हुआ है सब कुछ, तुमको क्यों पुकारे हम, और तुम ऊपर से कह रहे हो कि चलो मेरे साथ में, मैं आपके लिए चलता हूँ, तुम्हारे संग क्यों आए हम? ऐसा हम लोग कहते, क्योंकि अभी अभी का संकटमय अनुभव ये है कि अभी अभी का संकटमय अनुभव ये है अभी अभी का हमारा संकटमय अनुभव यह है कि आपके वजह से इतना बड़ा आतंक हुआ है, ऐसे हम लोग अगर उसमें होते तो कहते। लेकिन बिल्कुल विपरीत घटना को हम पाते हैं, इतना बड़ा जानलेवा संकट को अनुभव करने के बाद भी वो कृष्ण कृष्ण महाभाव ऐसे ही पुकार रहे हैं, और आते हैं कृष्ण बोलते चलो मेरे साथ में, तो भी उनके पीछे चल रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ। यानी कि जानलेवा संकट आने पर भी उनके चेतना से क्या प्रकट हो रहा है? प्रेम और श्रद्धा, पूरा पूरा विश्वास है उनके ऊपर कि आपके तरफ संकट भी आया, प्रेम भी आया, तो वो प्रेमी है। दोनों तरफ का जो अनुभव है वो प्रेमी है। तो ये चेतना जो है ये जन्म जन्मांतर के साधना और तपस्या का परिणाम है, कम से कम उन भक्तों के लिए जो बद्ध जीव हैं। नित्य सिद्ध जीवों के लिए तो ये बात नहीं है, वो तो हमेशा नित्य सिद्ध रहते हैं। लेकिन जो लोग साधना करके साधना सिद्ध बनकर भगवान को मिलने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये जन्म जन्मांतर के तपस्या मेहनत और साधना का परिणाम है, जिसकी वजह से ऐसी चेतना निर्माण हो सकती है। ये सुंदर चेतना जो है ये हमारे सबके जीवन का लक्ष्य है, और इसी को प्राप्त करने के लिए हम भजन करते हैं, और इसी को प्राप्त करने के लिए हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे सुंदर उत्सव का आयोजन करते हैं। ये आत्मा के आनंद और सुख का उत्सव है, शरीर में इसको सुख नहीं देने वाले हम, आपको सुना भी नहीं है, भोजन भी नहीं करना है, जल भी नहीं पिलाना है। तो सारे इंद्रियों को हमने आज बंद कर दिया है, बंद करना चाहिए भोग के लिए, और आत्मा के सारे दरवाजे खोल देने चाहिए, जो आत्मा उन्नति, आत्मा शुद्धि और आत्मा आनंद के लिए जरूरी है। तो इसी उद्देश्य से हम सब लोग आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारी चेतना, अगर हमारी इंद्रिया और शरीर और मन थक भी जाए तो हमारी चेतना एकदम तत्पर और जागृत रहे, तो श्री कृष्ण की कृपा और प्रेम को स्वीकार करने में हम समर्थ रहें। और आचार्य ये भी बताते हैं कि जिस दिन महान आचार्यों का और श्री कृष्ण और प्रभु रामचंद्र जैसे महान भगवान के अलग अलग रूपों का अवतरण दिन होता है, उस दिन वे बड़े दयालु होते हैं। जैसे राजा का जन्मदिन होता है, राजा बड़ा दयालु होता है, उस दिन बहुत दान देता है, वो सबको जो आया उसको दे देता है, जो मांगा वो दे देता है। तो इसी का लाभ उठाकर हमारे मन में जो भी आध्यात्मिक भगवान के सेवा के प्रति इच्छा है वो भगवान के चरणों में प्रस्तुत करने का भी ये दिन है। इसमें कुछ स्वार्थ नहीं है, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों के लिए भोग के लिए कुछ नहीं मांग रहे, हम उनकी भक्ति के लिए जो चेतना आवश्यक है उसकी मांग कर रहे हैं। तो आज के दिन हमें वही मांगना चाहिए कि जन्म जन्मांतर तक, लव मात्र के एक समय के प्रमाण तक, हम हमेशा आपके ही चिंतन में रहे, आपकी सेवा में रहे, आपके ही विचार में रहे, और हमारा जीवन, हमारा रोम रोम, हमारी सांस, हमारी धड़कन आपकी सेवा में हमेशा प्रस्तुत रहे। उसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, कोई बाधा नहीं आना चाहिए हमारी तरफ से या किसी और की तरफ से। इसलिए आज का दिन प्रार्थना का भी दिन है। एक तरफ से आप सेवा कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, मे बी फिजिकल लेवल पे, लेकिन एक तरफ से आत्मा की तरफ से बहुत ही प्रेम पूर्वक प्रार्थनाएं हम भगवान के चरणों में आज प्रकट कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, ताकि उनका ध्यान हमारी ओर, उनकी कृपा कटाक्ष हमारी ओर प्रस्तुत हो और हम उसके लाभकारी हो और हमारा जीवन संपन्न हो। जैसे कहते हैं ना कि कुछ दिन हम रूटीन काम करते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसा मौका आता है कि हम होलसेल में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेस एक ही दिन कर लेते हैं। भाई दिवाली का मौसम है, क्रिसमस का मौसम है, इसका मौसम है, दशहरे का मौसम है, बहुत सारा सेल कर लेते हैं उसका लाभ उठाकर। उसी तरह से भक्तों को जन्माष्टमी जैसे उत्सव में होलसेल आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक आत्मशुद्धि का लाभ कर लेने का प्रयास करना चाहिए। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, पूर्णता से परमार्थ है, पूर्णता से दिव्य सेवा है भगवान की, निरपेक्ष सेवा है भगवान की। तो आज का दिन व्रत करने के लिए है, आज का दिन इंद्रियों को सेवा में लगाने के लिए है, आज का दिन भगवान से प्रार्थना करने के लिए है और भगवान की कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, और हमारा ये अनुभव है, बहुत लोगों का अनुभव भी है, जब हम चेतना के सर पर पूरी तरह से मग्न हो जाते हैं तो बिल्कुल हमें इंद्रिया कष्ट देती नहीं है, ना भूख का विचार आता है, ना प्यास का विचार आता है। अगर हम कृष्ण भावना में मग्न हैं तो हमें भूख प्यास नींद इस प्रकार के रोज के विकार आज त्रस्त नहीं करते हैं। जितना हम मग्न रहेंगे उतना हम इंद्रियों के प्रभाव से दूर रहेंगे, ये भी आज के दिन का एक महात्म्य है। जैसे कि हमारे मन को और बुद्धि को आदत लग गई है कि इस दिन में उपवास करना है, इसमें सोचना भी नहीं क्या खाना है। जैसे एकादशी के दिन अभी कई सालों के बाद में भूखी नहीं लगती, क्योंकि वो इतना ट्रेनिंग माइंड को दिया है कई सालों से कि नहीं खाना है इस दिन पे। अपने आप एकादशी में बॉडी धीरे धीरे स्विच ऑफ हो जाती है, भोजन सामने आने पर भी लगता नहीं कि आज खाया जाए उसको। उस तरह से जन्माष्टमी रामनवमी है, ये केवल ट्रेनिंग का विषय है। भक्ति जो है वो मन को दिया हुआ ट्रेनिंग है। जो आज तक मन इंद्रियों के भोग में ट्रेनिंग प्राप्त कर चुका है, ऑटोमेटिक ट्रेनिंग मिल रही है उसको भोग की, उसी मन को अभी प्रयत्न पूर्वक इच्छा पूर्वक निश्चय पूर्वक भक्ति का ट्रेनिंग देना है। तो मन जब उसमें एक बार लग जाएगा तो भगवान कहते हैं कि जब ऐसा मन आप प्राप्त करेंगे तो मैं दूर नहीं हूं, मुझे आप ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं। जब मन को आपने भक्ति के मार्ग में ट्रेन किया है, कर रहे हैं, तो मैं आप ही के पास हूं। तो ऐसा है सुंदर उत्सव, भगवान की परम दया से हम श्री गोवर्धन धाम श्री वृंदावन धाम में मना रहे हैं। कितनी खुशी की बात है, शहर में वो दही हंडी का पॉलिटिक्स, शिवसेना राज क्या बोलते हैं उसको, मन से ये वो कांग्रेस सबका पॉलिटिक्स चल रहा है, क्या करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। जैसे वो कैसे कर रहे हैं, जैसे हम लोग आज के दिन में जितना हो सके उतना आध्यात्मिक धन उन्नति बटोरने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी अपना पॉलिटिकल एडवांटेज कितना लिया जाए इससे इसका प्रयास कर रहे हैं ना। हर एक अपना अपना एजेंडा होता है, उससे दूर होकर हम प्राकृतिक वातावरण में सत्वगुणी वातावरण में जहाँ प्रभुपाद जी की कृपा से श्री वृंदावन धाम प्रकट हो रहा है, श्री गोवर्धन धाम प्रकट हुआ है, इस सुंदर प्राकृतिक वातावरण में मन के लिए अनुकूल वातावरण में हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने जा रहे हैं। तो ऐसे दिन में पूरी तरह से बोलते ना दिलो जान से हमको लगना चाहिए। तो आप सबका धन्यवाद है, मैं आपका थोड़ा कृतज्ञ हूँ, आपने मुझे आपके बीच में बैठने का मौका दिया है आज के दिन। और मैं श्री कृष्ण भगवान के विषय में कुछ जो भी अध्ययन किया है उसके बारे में बताने का प्रयास करूँगा। श्री कृष्ण भगवान का अवतरण इस पृथ्वी पर, इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में केवल एक कृपा, एक ही उसका कारण है, ओनली मर्सी। बाकी फिर जीवों के दुख का हरण और भक्तों के प्रति प्रेम, भक्तों के प्रति प्रेम और कृपा, यही उसका एक उद्देश्य है। बाकी सारा जो है वो बाय प्रोडक्ट्स है। राक्षसों का वध है और पृथ्वी का भार कम करना है, लेकिन भक्तों के प्रेम के वश और उनको पर कृपा करने के वश भगवान आते हैं। भूमि देवी का बहाना है, वो रोते हुए जाती है गाय बनकर, लेकिन उनका आना जो है वो एक परम प्रेम का प्राकट्य है। और उस परम प्रेम के वो जो उद्देश्य है, जो हमको जो जिसको लेके भगवान आ रहे हैं, उसको ग्रहण करने में हमको सक्षम होना चाहिए। और आचार्यों की कृपा से और उनके उपदेश से हम इस कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो खैर, भगवान के जन्म की का वर्णन तो रात में करेंगे, लेकिन अभी कुछ ऐसा प्रयास करेंगे कि भगवान ने कई विवाह किए हैं, अनेक अनेक विवाह किए हैं, उन विवाहों के बारे में चर्चा करेंगे। और जो यहाँ पर घेवे वस्त्र पहनकर बैठे हुए हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम भगवान के विषय विवाह के बारे में सुनेंगे तो अपने विवाह के बारे में विचार दूर हो जाएंगे। ये भी निश्चित है ना। जब हम किसी फिल्म स्टार और किसी नेता के विवाह के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में वो फिर वो चेतनाएं जागृत होती है। वो क्या गृहस्थों के मन में भी चेतना जागृत हो सके और एक विवाह किया जाए। हमारे विवाह में ऐसा नहीं हुआ था, तो अभी समझ में आ गया ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन जब भगवान के विवाह के बारे में सुनते हैं तो हमारे विवाह के बारे में, हमारे भोग के बारे में जो चिंतन है हमारा, वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो दिव्य वस्तु है। भगवान चोरी भी करते हैं, मतलब गलत काम करते हैं एक्चुअली, लेकिन भगवान की चोरी के बारे में सुनकर भी आध्यात्मिक उन्नति होती। रण से भाग के निकल जाना ये कितनी कायरता की बात है, कभी उसका चिंतन नहीं होता है उसके बाद में, बहुत चिंतनीय वस्तु है। लेकिन जब भगवान रण से भाग जाते हैं तो वो चिंतनीय वस्तु हो जाती है, उसका मंदिर बनता है, रणछोड़ दास जी महाराज। तो भगवान के विषय में हमारे तरह हमारे अनुकूल हमारे अनुसार अगर कोई अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु होगी वो भी अनुकूल ही होती है दिव्य स्तर पर। इसलिए भगवान के विवाह के विषय में श्रवण करना हमारे परम आत्मशुद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम भगवान का विवाह का वर्णन ब्रज से ही शुरू करेंगे। ये कहानी बहुत लोगों को पता नहीं है क्योंकि बहुतों को लगता है कि भगवान के 16,108 रानियों के साथ विवाह हुआ था, लेकिन भगवान का ब्रज में छोटे से बालक जब थे तो उनका 3 करोड़ कन्याओं के साथ विवाह हुआ था। अब तक तो वो मथुरा गए ही नहीं, तो रुक्मिणी के तो बहुत दूर है अभी। वो कैसे हुआ? तो वह है कि एक सिंधु देश है ना अपना, वो भी पाकिस्तान में है, सिंध कहते हैं उसको आज। तो उसमें एक विमल राजा थे, बड़े धर्मशील, धर्मपरायण, सद्गुण संपन्न और बड़े दयालु राजा थे, वो कुशल राजा थे, आदर्श राजा थे। उनके पास हर प्रकार की संपत्ति, हर प्रकार का ऐश्वर्य था, भक्ति में वो लीन थे, भगवान के लिए भगवत परायण थे। इतना सब होने पर भी वो दुखी थे क्योंकि उनको संतान नहीं थी। अपने गुरु जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मुझे अभी सुख प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे पता नहीं मेरे बाद में मेरे राज्य को कौन संभालेगा। तो गुरु जी ध्यान करते हैं और देखते हैं, मेरे ख्याल से नारद मुनि आते हैं उनको मिलने के लिए और बताते हैं कि दूर दूर तक आपको कोई पुत्र की प्राप्ति होते हुए नजर नहीं आ रही मुझे। तो और एक दुख भरा रिजल्ट आया उसका, लेकिन मैं देख रहा हूं आपके भविष्य में 3 करोड़ कन्या दिख रही है मुझे आपको। 3 करोड़ कन्या थोड़ा जोक, एक कन्या होगी तो भी कितना टेंशन होता है, 3 करोड़ कन्या होने वाली है। तो राजा और चिंतन में आ गया, अरे 3 करोड़ कन्याओं को मैं वर कहां से ढूंढूंगा। लेकिन फिर वो गुड न्यूज देते हैं उनको, एक वो सारे 3,003 करोड़ कन्याओं का वर जो है वो भगवान स्वयं होंगे जो अभी अवतार ले चुके हैं। तो फिर वो कहते मैं उनको कैसे पहचानूं कि मेरे कन्याओं का वर कौन होगा। तो वो जो गर्ग संहिता और भागवत में जो श्री कृष्ण का वर्णन आता है ना, मथुरा में जब वो वसुदेव देवकी के सामने प्रकट हो गए जेल में, 4 भुजा वाले, शंख चक्र पद्म गदा धारण कर किए हुए, घुंघराले बाल, घनश्याम वर्ण उनका घन की तरह वर्ण है और सुंदर कमल नयन आंखें हैं उनकी और कानों में कुंडल पहने हुए हैं और पीताम्बर धारण किए हुए हैं, ऐसा सुंदर वर्णन करते हैं वो, मोर पंख धारण किए हुए हैं, वो आपके कन्याओं का वर होंगे। तो फिर वो तुरंत, क्योंकि उसके पहले ही भगवान का जन्म हो चुका है और भगवान ऑलरेडी अभी वृंदावन में है, तो राजा तुरंत अपने दूत को भेजता है वृंदावन। एनीवेज इसके बाद में उनको कन्याओं का जन्म प्राप्ति होती है, कन्या प्राप्त होती है और यथावकाश वो उपवर हो जाती है। तो उस समय राजा अपने दूत को वृंदावन भेजता है, उसको लिख के देते हैं वर्णन क्या उन्होंने सुना था, कैसे पहचानना है उनको। तो दूत जाता है, पूरे वृंदावन में ढूंढता है तो एक जगह पर उनको बहुत सारे बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं, सारे ग्वाल बाल खेल रहे हैं आनंद से, जमुना किनारे में यहाँ से वहाँ कूद रहे हैं, कोई मेंढक बन रहा है, कोई पक्षियों की आवाज़ निकाल रहा है, कोई जूठन खा रहा है, कोई पेड़ से कूद रहा है, कोई पेड़ पर कूद रहा है, कोई पेड़ से जमुना जी में कूद रहा है, कोई मेंढक बन करके जमुना जी में छलांग लगा रहा है। तो सुंदर आनंदमय वातावरण है, उसके अंदर 2 बालक हैं, एक गोरे रंग का और एक सांवले रंग का। तो उनका वर्णन जो है वो सांवले रंग के बालक से मिलता जुलता है जो उन्होंने लिख कर लाया हुआ है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, सारा वर्णन मिलता जुलता है, केवल 4 भुजा के बदले में 2 भुजा है। तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, और अभी सारा वर्णन तो मिलना चाहिए ना, यू कैनॉट जस्ट से कि ये ठीक है चलेगा अपने को, ऐसा नहीं हो सकता ना। जो वर्णन गुरुजी ने बताया है, जो दिव्य वाक्य है, पद्म वाक्य है, उसके अनुसार 100% मिलाप होना चाहिए, उसका मेलजोल होना चाहिए। तो बेचारा दूत वापस चला जाता है राजा को मिलने के लिए, बताता है सब कुछ मैंने देख लिया लेकिन एक पॉइंट जो है ना वो नहीं मिल रहा है। तो राजा फिर परेशान हो जाते हैं, अभी क्या किया जाए। तो देखिए कैसा कर्म धर्म संयोग है, उसी समय भीष्मदेव जब जवान थे, देखिए कैसा है ना, ये जब भगवान यहाँ पर बाल लीला कर रहे हैं तो भीष्मदेव यहाँ वहाँ पर युवराज के रूप में हस्तिनापुर में, और वो युवराज मतलब राजा तो नहीं बनने वाले लेकिन राज्य संभाल रहे हैं और वो दिग्विजय कर रहे हैं। तो दिग्विजय की अपने प्रक्रिया में वो सिंधु देश के पास आते हैं और सिंधु देश को तो युद्ध नहीं करना है, तो भक्त है, भगवान का मित्र है, उनका उनका एलाय है, वो साथी है, तो वहाँ पर कुछ नहीं करना, जाना है, भोजन करना है, प्रेम से वार्तालाप करना है और वो अपना साइन कर लेंगे कि यस हम मान्य करते हैं आपका दिग्विजय और आगे चले जाना है, उसमें युद्ध युद्ध करना चैलेंज करने की बात नहीं है। तो भीष्मदेव दिग्विजय के लिए आए हैं लेकिन एक मित्र बनकर आए हैं, तो उनका सत्कार होता है, स्वागत होता है, पूजा होती है, गौरव होता है, भोजन खिलाते हैं और फिर विमल राजा ये प्रश्न करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, मुझे गुरुदेव ने बताया था लेकिन ये समस्या है कि वो दो भुजा वाला लड़का दिखा, तो भीष्मदेव उनको एकांत में एक गुप्त बात बताते हैं कि मैं आपको रहस्य की बात बता रहा हूँ कि वो बालक वही है लेकिन उनकी लीला है कि वो चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए थे लेकिन देवकी के इच्छा से और लीला के कारण वो भी दो भुजा वाले रूप में वहां पर लीला कर रहे हैं, तो वही आपके लड़कियों के लिए उपवर्ग पुरुष हैं। तो फिर वो अपने दूत को भेजते हैं और फिर वो उनको ढूंढ के निकालते हैं वृंद में, कहीं वृंदावन में वो खेल रहे हैं। तो इस बार जब आते हैं तो वो पहली बार तो दूर से देखकर चले जाते हैं, कुछ मिलने का प्रयास नहीं करते हैं, इस बार मिलने का प्रयास कर रहे हैं और भगवान भी अंतर्यामी जानते हैं कि ये व्यक्ति क्यों आया है, इसके दिल में क्या बात है। तो भगवान एक और रूप में विस्तारित हो जाते हैं, एक रूप अपने बालकों मित्रों के साथ में छोड़ देते हैं खेलने के लिए और दूसरे रूप में जो बालकों को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं लेकिन इसके पास चले जाते हैं, दूत के पास। फिर दूत अपना मंतव्य व्यक्त करता है कि मैं राजा बिमल की ओर से आया हूँ और ऐसा ऐसी पार्श्वभूमि है जिसकी वजह से मैं आया हूँ और आप हमारे साथ चलिए, राजा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो रूप जो कृष्ण का है वो उस दूत के साथ में हवाई मार्ग से सिंधु देश पहुँचता है और ये रूप जो है वो अपना बाल लीला, ग्वाल बाल, गौचारण लीला करके अपने घर चले जाते हैं और रोज की तरह आना जाना चलते रहता है और ये रूप जो है वो सिंधु नरेश के पास पहुँचता है। और जब भी हवाई मार्ग से दूत और श्री कृष्ण बालक जब आ रहे हैं, मतलब अभी उतरे भी नहीं है, तो वहां पर सिंधु नरेश विमल जो है वो अनंत यज्ञ कुंडों के साथ में भव्य यज्ञ कर रहे हैं, अनंत ऋषियों के साथ में बहुत सुंदर दिव्य सरचार्ज एटमॉस्फेयर है। तो जैसे भगवान का अंतरिक्ष में दर्शन करता है तुरंत उठ के खड़े हो जाते हैं रानियों के साथ में और तुरंत अपनी 3 करोड़ कन्याओं को सालंकृत करके पूरे अलंकार के साथ श्रृंगार के साथ में यहां पर लेके आते हैं और उसी असेंबली में, उसी यज्ञ कुंडों के वातावरण में, उसी यज्ञशाला में ऋषियों की सहायता से भगवान कृष्ण का 3 करोड़ कन्याओं के साथ में विवाह कर देता है। कैसा होगा वो एरिना आप सोच सकते हैं, जो हमारे इस गोल मंदिर में हम जो 11 कुंड बनाए यज्ञ के, 11 पुरोहित वहां बैठकर मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और कितने सारे पठन कर रहे हैं और कितने सारे देख रहे हैं, कितने सारे, तो कैसा लगेगा आपको इतना भव्य वातावरण। ये 3 करोड़ लड़कियों को खड़ा रहने के लिए कितनी जगह चाहिए होगी, अगर माला भी पहनानी है उनको तो वही कितना टाइम लगेगा, कितना भव्य वातावरण होगा, हम लोग उसका कल्पना नहीं कर सकते कि दिव्यता भगवान की कैसी है, कितनी होती है। 16,108 महल कैसे होंगे और वो कितनी एरिया में डिवाइड होंगे और कैसे कैसे वहाँ पर क्या क्या होता होगा, ये जस्ट कैनॉट इमेजिन। तब ऐसे दिव्य रूप में अनंत ऐश्वर्य के साथ भगवान का विवाह होता है और विमल राजा उनको दिल से दहेज देता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कथा में कि दहेज का मतलब क्या होता है, वो आजकल वो तो एक मारुति की गाड़ी की चाबी देता है तो बड़ा, मारुति की गाड़ी का चाबी दिया दहेज में, एक फ्लैट दे दिया, एक क्लिनिक बना के दिया गले में एक सोने का चेन दिया, साउथ इंडियन पोले का माला दिया, तो हम लोग कितना गर्व करते कि इतना डाउरी दिया, लेकिन क्या डाउरी और दहेज दिया करते थे आप देखकर हैरान हो जाएगा, आगे बताएंगे आपको। तो वे विमल राजा के कन्याओं के साथ विवाह करके भगवान हवाई मार्ग से 3 करोड़ नवपरिणित विवाहित अपनी पत्नियों को लेकर काम्य वन में आते हैं, वहां से सिंधु नरेश से उतर कर काम्य वन में आते हैं जो ब्रज की उत्तर दिशा में है, मतलब वृंदावन के पहले आता है वो उत्तर दिशा में और वहां पर भगवान काम्य वन में अपनी 3 करोड़ नवपरिणित पत्नियों के साथ में रास लीला करते हैं। इतना सुंदर, अभी तक यहाँ पर रास लीला शुरू नहीं हुई है, जो प्रकट रास लीला जो है ना, जो रास पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा का दिन भगवान ने प्रकट की थी, वो अभी तक हुई नहीं यहाँ पर, उसके पहले ही वहाँ पर भगवान रास रचाते हैं और 3 करोड़ रूप में भगवान विभाजित हो जाते हैं और हर एक पत्नी के साथ नृत्य करते हैं।
इतना सुंदर नृत्य करते, भाव विभोर होकर सब पत्नियों को दिव्य आनंद का अनुभूति देते हैं, और उस दिव्य आनंद में उनके आंखों से प्रेम के अश्रु बहते हैं और शरीर से प्रेम का स्वेद सुगंधित बहता है, और वो सारा श्री कृष्ण के भगवान के आंखों से और शरीर से और 3 करोड़ पत्नियों के शरीर से और आंखों से जो द्रव्य निकलता है वो इकट्ठा होकर एक बहुत विशाल कुंड स्थापन होता है, उसका नाम क्या है? विमल कुंड। जैसे ये कुंड बनता है उसमें ऐसे कहते हैं 84,000 तीर्थ जो है तुरंत प्रवेश करते हैं आश्रय लेने के लिए, जस्ट टू गेट शेल्टर, क्योंकि वो सारे तीर्थ जो भी है वो भगवान के भक्त हैं, व्यक्ति रूप हैं वो, और भगवान की सेवा करना चाहते हैं और तीर्थ रूप में भगवान की सेवा करते हैं। मतलब लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ अर्पण करते हैं, कभी नदी में स्नान करते हैं, वो तीर्थ का सेवा है, और लोगों का पाप ग्रहण करते हैं, लोगों को पाप मुक्त कर देते हैं, तो वो सारे तीर्थ भी अपने भी शुद्धि के लिए प्रयास करते रहते हैं, वो आकर ब्रज का सहारा लेते हैं, ब्रज में आश्रय प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से विमल कुंड जो है वो तीर्थराज बन जाता है, आज भी उसको तीर्थ का राजा कहते हैं, और उसका वरदान भगवान ने दिया है कि जो भी इसमें स्नान करेगा वो कभी दोबारा लौटकर पृथ्वी पर नहीं आएगा, किधर भी नहीं आएगा शरीर धारण करने के लिए, वो सीधे भगवत धाम चला जाएगा। हम लोग, आप में से कितने लोग विमल कुंड गए? हरे कृष्णा। बाकी लोग नहीं गए तो प्रॉब्लम नहीं, कुछ श्रवण मात्र से भी आप वहां पहुंच सकते हैं, चिंतन मात्र से वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि आज का विमल कुंड जो है वो आज के फिजिकल कंडीशन में है, लेकिन दिव्य विमल कुंड तो दिव्य विमल कुंड है, वो तो अपनी स्थिति में है, चिरंतन चेतना में है। सबसे बेस्ट जो है धाम यात्रा जो है वो श्रवण से होती है, धाम के अंदर भी यात्रा तब संपन्न होती है तभी जब श्रवण होता है ना, नहीं तो विमल कुंड खड़ा है, लोग स्नान कर रहे हैं, पंडा लोग दर्शना मांग रहे हैं, आपको हैरेस कर रहे हैं, आप लोग क्या है ये विमल कुंड है, ठीक है चले जाते हैं, लेकिन वहां बैठ के अगर आप कथा सुनेंगे तो एकदम आपका चेतना बदल जाएगा, दृष्टि बदल जाएगी, और आपको वहां पर भी श्रवण करने मात्र से ही वो धाम का दर्शन होगा, दिव्य चक्षुओं से, श्रवण इंद्रियों के माध्यम से, है ना। तो इसी तरह से अगर आप वहां गए भी नहीं होंगे और फिलहाल गए होंगे तो आज हम यहां बैठे होंगे, फिर भी आप चिंतन से विमल कुंड में दर्शन और स्नान कर सकते हैं। तो आप लोग एक क्षण में आंख बंद कीजिए और विमल कुंड का ध्यान कीजिए, जहां पर भगवान ने रास लीला किया अपने नवपरिणित पत्नियों के साथ में, और वहां पर दिव्य जल उत्पन्न करके कुंड उत्पन्न किया, 84,000 तीर्थों ने वहां पर आश्रय प्राप्त किया, ऐसे श्रेष्ठ परम श्रेष्ठ तीर्थराज विमल कुंड को हमारा प्रणाम है। हरे कृष्णा। तो ये हो गया भगवान का पहला विवाह जो ब्रज में संपन्न हुआ सबसे पहले। उसके बाद में श्री कृष्ण भगवान ब्रज छोड़कर ब्रज के बाहर चले गए, चैतन्य महाप्रभु भी बाल लीलाओं के बाद 24 साल के बाद में विवाह करके अचानक ब्रज मायापुर धाम छोड़ के चले गए। प्रभु रामचंद्र भी वनवास के बहाने अयोध्या छोड़ के चले गए। एक एक आपको दिखता है ना, एक पैरेलल है, पैरेलल, क्योंकि जब धामवासी उनके निवास से, उनके संग से, संग में परिपूर्ति प्राप्त कर लेते हैं, परफेक्शन इन एसोसिएशन विद द लॉर्ड, तब भगवान उनको अगला अध्याय पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उनको छोड़ के चले जाते हो और भाव रूप में इनके साथ निवास करते हैं और शरीर रूप से चले जाते हैं, और अति उत्कट हर एक व्यक्ति को जो संग पहले प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि पहले कैसे संग प्राप्त हुआ था, केवल रास लीला ऐसी है जिसमें उन्होंने इतने रूप विभाजित किए थे, लेकिन बाकी सारे लीलाओं में तो अकेले थे ना वो, जैसे कि ग्वाल बाल का संग खेल रहे हैं तो वो अकेले हैं और ग्वाल बाल बहुत सारे हैं, तो सबको मिलकर एक कृष्ण के साथ संग करना है, लेकिन जब कृष्ण चले जाते हैं तो हर एक के हृदय में एक भाव रूपी कृष्ण सारा मतलब प्रवेश करते हैं हृदय में, और हर एक व्यक्ति को, गोप ग्वाल हो, गाय हो, बछड़ा हो, मोर हो, या तोता हो, या कोयल हो, या नंद महाराज हो, यशोदा हो, हर एक व्यक्ति को भाव रूप में श्री कृष्ण का अलग उत्कट संग प्राप्त हो रहा है। ये विरह का एक रहस्य है, वो है भी और नहीं भी, और है तो इतनी उत्कट मात्रा में है, नहीं शरीर मात्रा से नहीं है, दूर चले गए हैं, तो चले जाते हैं। और यथावकाश फिर अब जानते हैं कि कंस का वध करते हैं, बहुत राक्षसों का वध करते हैं, और आखिर में मतलब बीच में कंस का मेन जो राक्षस है उसका वध करते हैं, और उनका वध करने के बाद में कंस की दो जो कन्या थी, पत्नी थी, अस्थि और प्राप्ति, वो विधवा हो जाती, और वो जरासंध की कन्या थी वो। और संक्षेप में बताया जाए आपको कि कंस इतना महाबलशाली था कि ऐसे ही एक बार अपने एक जगह तंबू में खेल रहते हुए कुश्ती का प्रैक्टिस कर रहा था वो, जस्ट टू मेक हिम मोर स्ट्रांग। और कैसे कैसे यू नो मुष्टिक चाणूर जैसे भयंकर शक्तिशाली लोगों के साथ प्रैक्टिस करता था वो, सबको परास्त करता था वो। ऐसे एक प्रैक्टिस के तंबू में वो खड़ा था और प्रैक्टिस कर रहा था कुश्ती का, तो अचानक कोयला पीड़ जो हाथी है वो जरासंध के तंबू से साखड़ी तोड़कर क्या कहते हैं उसको ना, बेभान होकर बाहर निकल के भाग भाग के इस तंबू में आ जाता है। और वो कोयला पीड़ हाथी इतना भयंकर, इतना प्रभावी, इतना शक्तिशाली था कि ये सारे मल्ल जो भयंकर मल्ल थे वो भाग गए उसको देख के, केवल देखने मात्र से भाग गए। लेकिन कंस नहीं भागा, वहीं खड़ा हो गया। जैसे हाथी आया उसको सुंड से उठा के पटका जमीन पर, और सुंड से भी उठा के घुमाया और घुमा के उसको फेंक दिया, वापस जरासंध के तंबू में गिर गया। के वो जरासंध बहुत परेशान हो गया देख के, कोयला पीड़ हाथी को कोई उठाकर फेंक दिया वापस, जो मेरे तंबू से भाग गया, मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं मेरे सैनिक। तो पूछताछ किया उन्होंने, कौन है ये व्यक्ति? बोले कंस नाम का राजा है, दिग्विजयी, वहां पर कुश्ती की प्रैक्टिस कर रहा है। उसने कुश्ती के बीच में, ये बीच में आया तो इसलिए उठा के आपको तंबू में फेंक दिया उसको वापस। तो उन्होंने सोचा कि कोई अभी चैलेंज वैलेंज करना नहीं है, इससे दोस्ती करना चाहिए, इसके साथ में रिश्ता जमाना चाहिए। तुरंत पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, हाँ, तुरंत दो कन्याओं को लेके आता है, अलंकार पहना के श्रृंगार करके, बोला चलो मेरे साथ। और तुरंत जाकर उस तंबू में कंस को मिलता है और कहता है, मैं जरासंध हूं और मेरी कन्या है, इसको स्वीकार करो अपने विवाह के रूप में, आप स्वीकार करो। और कंस उन अस्थि प्राप्तियों को दोनों को पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। थोड़ा सा मैं आपको बताया कंस का शक्ति, गर्ग संहिता में तो पूरा विस्तार में दिया है कंस का महात्म्य, जरूरी है वो। क्यों? जब तक आप कंस की महानता नहीं समझोगे तब तक कृष्ण की महानता समझोगे कैसे? कि ऐसे महान व्यक्ति को श्री कृष्ण ने एक मुक्का मारकर, बाल पकड़कर खींचकर ऐसा प्रकार से मारा। वो कोई ऐसा लल्लू पंजू नहीं था, वो कमजोर कोई टीबी पेशेंट नहीं था वो वो ऐसा महान शक्तिशाली दिग्विजयी कोल्या पीठ जैसे हाथी को हवा में उठा के फेंकने वाला व्यक्ति था, उसको भगवान ने ऐसे बाल पकड़ के खींचा और घसीट घसीट के मारा उसको, एक मुक्का मारकर खत्म कर दिया और पूरे अखाड़े में घुमाया उसको, बाल पकड़ कर खींचा उसको। वो कंस है वो। इसलिए गर्ग संहिता में विस्तार में वर्णन दिया, उसका चरित्र का वर्णन दिया है, लाइफ का वर्णन दिया है कि कौन था वो कंस। तो एनीवे, जब कंस की मृत्यु हो गई तो जरासंध दुखी हो गया, तो उसने क्रोध के वजह से मेरे पति, क्योंकि पत्नियां कैसी है, जैसे ही कंस का वध हो गया रोते रोते पिताजी के पास चली गई, देखो पापा हमारे पिता पति का वध किया गया वो कृष्ण नाम के व्यक्ति ने। तो उसने 24 अक्षौणी सैन्य को इकट्ठा किया और हमला किया मथुरा के ऊपर। अभी कैसा है ना, महाभारत जब हुआ था ना तो वो युद्ध भूमि पर हुआ था, दे डिसाइडेड कि हमारा मैच का एरिया है, ये हमारा स्टेडियम है, यहाँ पर हम लोग खेलेंगे। ये ऐसा नहीं है रहिवासी एरिया में घुस गए सब लोग, जैसे आतंकवादी घुसते ना आपके रेसिडेंशियल एरिया में, कभी होटल में, कभी एंजॉयमेंट पार्क में, किधर अचानक घुस जाते हैं, वहां पर कोई आतंक मचा देते हैं। तो रहिवासी जगह पर शांति आनंद और अच्छे तरह से रहना चाहिए। तो रहिवासी जहां पर मथुरा नगरी के महल बने हुए हैं, लोग रहते हैं, रस्ते हैं, कुआं है, बगीचा है, उपवन है, वहां पर ये सेना घुस जाती है और वहां पर कृष्ण बलराम बाहर निकलते और उनका सबका वध करते। और जरासंध का वध करने वाले तो बोलते, कृष्ण बोलते भैया मत करो इसका वध, बलराम जी को कहते इसमें इतना एनवी ऑलरेडी भरा हुआ है पर्याप्त मात्रा में, इसको छोड़ देंगे तो वो सबको लेके आएगा वो अलग अलग से दुनिया में ढूंढ ढूंढ के जाकर राक्षसों को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा एक ऐसा मोहरा है कि इसको छोड़ दो आप, बाकी सबको मार दो, वो जाएगा अकेला अकेला, इतने उसको क्रोध और इतनी बदले की भावना होगी कि वो जा के ढूंढ ढूंढ के पर सैनिक का इकट्ठा करेगा और दरवाजे पे लेके आएगा आपके, बिना मेहनत के आप अपने अपने घर से बाहर निकलो, अपने दहलीज से बाहर से निकलो और खत्म करो उनको। दिस इज ऑल्सो पोलिटिकल इंटेलिजेंस। अरे मैं हो सकता है कि मेरा अवतार दुष्कृतों लोगों के लिए मारने के लिए हो गया होगा, हो सकता है, इज राइट, आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय द मिसक्रिएंट्स, लेकिन मैं मेहनत क्यों करूं? वो है ना मेहनत करने के लिए, उसके अंदर इतना द्वेष भरा हुआ है, वो ऑलरेडी मेहनत के लिए तैयार है, वो खुद ही लेके आएगा। एक बार दो बार नहीं, वो 24 बार आया, वो कितनी सॉरी 17 बार आया, वो 17 बार 24 अक्षौहिणी सरने लेकर आया, हर बार चुन चुन के, पहले मर गए तो दूसरा सेठ को ले गया, और 17 बार भगवान ने उसको परास्त किया। अभी वो 18वीं बार 24 अक्षौहिणी सरने को लेकर आ रहा है, तो अभी देखो, अभी आप सोच सकते हैं ना, अभी समझो आपके एरिया में अभी आतंक भी कैसा होता है ना, वो है एक एरिया में बार बार नहीं होता है। अभी कभी सुना है आपने कि दादर में एक बार 92 में हुआ था, वापस दादर में 93 में हुआ, बाद 2006 में हुआ, ऐसा होता है कभी? क्या नहीं होता ना। लेकिन ये एक ही जगह पर लगातार 17 बार आतंक हो रहा है, तो प्रजा कुछ बोलेगी ना कि भगवान क्या चल क्या रहा है, हमारा कुछ खाने पीने का कुछ शांति का कुछ काम है कि नहीं यहाँ पर, हम भी रहते हैं यहाँ पर। अभी आपने कंस को मार दिया और अपनी पत्नियों को विधवा कर दिया, और वो जरासंध उसका पिताजी ससुर कंस का आ रहा है, और हम लोग परेशान हैं इसकी वजह से, हमारी शांति हमारा सुकून खत्म है यहाँ पर, कुछ करो भगवान। आतंक किया मतलब आक्रोश किया उन्होंने भगवान के साथ। तो भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, बोले विश्वकर्मा जाओ वेस्ट में जाओ, वहाँ समुद्र है, वहाँ पर जगह बनाओ, रिक्लेमेशन ऑफ लैंड, हाँ समुद्र को पीछे हटाओ, वहाँ पर मेरी नगरी को बसाओ। तो उन्होंने एक रात में मतलब जैसे कि तुरंत ही बनाया, रात को भी बहुत दूर समय होता है, शाम को बुलाया और रात होने के पहले सारा द्वारका बनकर तैयार हो गया, एक्सप्रेस कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई क्वालिटी। और उसके आगे की बात सुनिए, लोग तो मथुरा में सो गए अपने अपने घर, लेकिन जब सुबह उठे तो अपने नए घर में उठे द्वारका में। मुझे ये बात सुनकर, वो अभी भी जब बताता हूँ पढ़ता हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य और आनंद होता है सुनकर, ऐसा भी शिफ्टिंग हो सकता है ना, कोई टेंशन ही नहीं है, आपको केवल सो जाना है बस, और आपको सोते हुए जगह पर आपके नए घर में रखा जाएगा, वो भी आपके नए बिस्तर पे, आपका सारा सामान अपने में जगह पे, और नया घर पूरा फर्निश्ड, सारे केवल अपना खुद का महल और खुद का घर भगवान ने शिफ्ट नहीं किया, सारे मथुरा वासियों को पूरा एन मास द्वारका में शिफ्ट किया, ओवरनाइट, रात को सोकर सुबह वहां पर उठे और अपना जीवन वहां शुरू किया उन्होंने। तो जरासंध आया, देखा उन्होंने, अरे ये तो नगरी खाली हो गई, किधर गया डरपोक, मेरे डर से भाग गया। तो पता करता है तो वो बोलते कि वो द्वारका चले गए। उसी समय और एक राक्षस भी प्लान कर रहा है द्वारका पर आक्रमण करने का, वो उसका नाम है कालेवन, नहीं उसका नाम क्या है, कालेवन सरेस करेक्ट। तो वो न्यूज कृष्ण को मिलती है कि अभी कालेवन भी आ रहा है और जरासंध भी आ रहा है, तो दोनों का आतंक प्रजा को एक साथ सहन करना मुश्किल है, तो इसलिए वो तुरंत प्लान करके उनको शिफ्ट कर देते हैं। तो कालेवन भी आता है और फिर वो द्वारका में आता है, द्वारका में आक्रमण करते ही फिर द्वारका के सब समुद्र के अंदर के एरिया में, समुद्र में नहीं लेकिन समुद्र के बहुत विस्तार एरिया में सब लोग निवास कर रहे हैं, उसके बाहर भगवान आते हैं। और आप जानते हैं, मैं उस कथा में नहीं जाऊंगा, भगवान वो कालेवन को छोड़ के चले जाते हैं और एक गुफा में घुसते हैं, वहां पर मुचकुंद आराम करते रहते हैं, वापस मेहनत क्यों करना है ना, ऑलरेडी एक घटना हो गई है तो ऑलरेडी इसका इलाज है, हमको खाली सोच समझ के उसको टाइम पर फिट करना है उसको। तो भगवान डरपोक होना पसंद करते हैं बोलो, क्योंकि उनके मन में डरपोक होने का जो उपाधि उनको मिलने वाला है उसकी उनको परवाह नहीं है, लोग उनकी निंदा करेंगे डरपोक के रूप में उसकी भी उनको परवाह नहीं है, लेकिन उनका व्यक्तिमत्व जो है वो करुणा प्रधान है, उनको पता है किसी युग में मेरा एक भक्त जो है वो इतने युद्ध करके वरदान प्राप्त करके यहाँ सोया हुआ है, और उसने ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि उसको कोई उठा भी सकता नहीं, कोई संत कोई ऋषि कोई देवता उसको पास जा भी सकता नहीं, क्योंकि वो खुद मर जाएगा, लेकिन भगवान नहीं भूलते उसको, उसने जो उपकार किया है मेरे भक्तों पर, भगवान को याद है, कई अवतारों के कई युग बदल चुके हैं कि भगवान को याद है कि एक मेरा भक्त वहां पर सोया है, उसका उद्धार कैसे होगा। यहां पर कालेवन गाली दे रहा है उनको, दर्पो कायर तुम तो केवल गाय हाँकने के योग्य हो, शस्त्र वस्त्र राज करने का तुम्हारा काम नहीं है, तुम गाय को हाँको और गोमूत्र गोबर में खेलते रहो, यही तुम्हारी योग्यता, ऐसे भयंकर शब्द बोला जा रहा है जो वीर पुरुष है जिसने जरासंध जैसे व्यक्ति को 17 बार परास्त किया है। लेकिन अंदर चले जाते हैं और अपना जो उत्तरी वस्त्र है वो मुचुकुंद में डालते हैं और छुप जाते हैं, उसको लगता है कि भेष बदल कर सो रहा है, तो लात मार के जगा देता है, उसकी आंख खुलते ही जस भस्म होकर मर जाता है, और फिर भगवान आकर तुरंत उनको दर्शन देकर कृपा करते हैं उसके ऊपर। एक तो बुद्धिमानी है, कोई युद्ध वुद्ध करने की जरूरत नहीं, अपने आप मर जाएगा ये। लेकिन उससे भी ऊपर उनका गुण जो है वो करुणा का है. इट डजंट केयर फॉर द फेम ऑफ नॉट बॉदर्ड विथ द उपाधि ऑफ डरपोक. दैट इज नॉट मेन पर्पज कि अपना वैराग्य लोगों को प्रकट करना है कि मैं बिल्कुल अपने उपाधियों से आसक्त नहीं हूं. ये उनका पर्पज नहीं है. उसकी प्रधान उद्देश्य जो है वो करुणा का है. एनीवे फिर वो वहां से वापस आता है तो कालेवान की मृत्यु होती है. सब कालेवान के वीर जो है वो उसको सेना मार देती है. फिर जरासंध आता है उसके बाद में खोजते खोजते. अभी भगवान लौट कर आए हैं तो फिर कृष्ण बलराम बाहर निकलते हैं. लेकिन उसी समय पर एक भक्त पुकार रहा है. वो कौन है? रुक्मिणी देवी विदर्भ देश में, जो द्वारका के पूर्व दिशा में है और बहुत दूर है. महाराष्ट्र में आज नागपुर जो है वो विदर्भ है और आज के तारीख में गुजरात में द्वारका है समुद्र के अंदर. कितना दूर अंतर है. तो वहां पर क्या हो रहा है संक्षेप में? रुक्मिणी जो है भीष्मक राजा की कन्या है और भीष्मक राजा जो है उनका एक छोटा सा इतिहास भी है कि भीष्मक राजा ने चंद्रावली गोपी का 5 साल तक संगोपन किया था. जब विंध्य पर्वत को तपस्या करके 2 कन्याओं की प्राप्ति हुई थी, राधा रानी और चंद्रावली, और राधा रानी को ऐसा वरदान था कि इनका जो पति होगा वो महादेव को परास्त करेगा, ऐसा वरदान था. उस वरदान के साथ तपस्या करके राधा रानी की पुत्री के रूप में प्राप्ति हुई थी विंध्य पर्वत को. तो कंस ने सोचा कि मैं इसके साथ विवाह करूंगा तो इसके वर के वजह से मुझे इतना बल प्राप्त होगा कि मैं महादेव को परास्त कर सकता हूं. जाओ पुतना, उस 2 कन्याओं को लेकर आओ, मैं शादी करूंगा उनसे. क्या है ना, डिमोनियक मेंटेलिटी, जो राक्षसी प्रवृत्ति होती ना वो ऐसी होती है. कोई उनका क्या कहते हैं उसको, कोई रीति रिवाज, कोई नियम, कोई होता है ना गुड बिहेवियर कल्चर, कुछ होता नहीं है. अपने स्वार्थ के लिए एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं. जाओ उस कन्याओं को उठा के लेकर आओ. तो वो खेसरी गई, वो तृण के पत्ते को अभिमंत्रित करके हवाई जहाज बनाकर खेसरी उड़ के चली गई और उन्होंने भरी सभा से 2 कन्याओं को उठाया. तो विंध्य पर्वत ने क्या किया, मतलब व्यक्ति विंध्य पर्वत ने ब्राह्मणों को बुलाया, अरे मेरे कन्याओं को उठा के ले गई वो, चलो बैठो यहां पर, मंत्र मंत्र बोलो, यज्ञ करो, उसके शरीर में अग्नि पैदा करो, अग्नि तत्व को प्रज्वलित करो शरीर में उसके, झलने दो उसको. तो मंत्र लोग तुरंत बैठ गया, उन्होंने अपना अपना विधि शुरू किया तो झलने लगी आकाश में. वो उड़ रही है मथुरा की ओर. हाँ, कहां से? विंध्य पर्वत महाराष्ट्र में, वहां से उत्तर की ओर जा रही है वो. बीच में विदर्भ आता है और वहां से वो ऊपर जाने वाली है. तो विदर्भ के ऊपर जैसे उसका झलना लगता है, एक हाथ से वो कन्या को छोड़ देती है. तो वो विदर्भ के भीष्मक राजा के पास पहुंच जाती है और भीष्मक राजा उस कन्या को 5 साल तक संगोपन करते हैं. उसके बाद में पूर्णमासी देवी आकर ले जाती उनको ब्रज में और वो चंद्रभानु को उनको दे देती है और वो चंद्रावली हो जाती है वहां पर. दूसरी कन्या जो है वो फिर जब और जलता है शरीर उसका तो ब्रज तक पहुंच जाती है वो, तो वृषभानु महाराज के कुंड में उसको छोड़ देती है. और वो राधा रानी है जो कमल दल में उनका स्वागत, कमल दल, कमल पुष्प जो है विशाल प्रकट होता है उसमें राधा रानी को स्वीकार करते हैं, मतलब दे रिसीव हिम हर. और नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर राधाष्टमी, वृषभानु महाराज को राधा रानी प्राप्त होती है. तो उस तरह से वो कुछ 1 साल को 15 दिन कम उम्र की होती है, 1 साल की होती है लेकिन 15 दिन कम, इसलिए वो कृष्ण से छोटी भी है 15 दिन से और कृष्ण से 15 दिन बड़ी भी है, दोनों सत्य हैं. एनीवेज, तो ये मैंने क्यों बताया, भीष्मक का एक थोड़ा इतिहास बताया. भीष्मक राजा ने ये सेवा भी किया था. तो भीष्मक राजा के पास 5 पुत्र थे. सबसे श्रेष्ठ जो ज्येष्ठ पुत्र था वो रुक्मी और 1 कन्या रुक्मिणी. और देखिए श्रवण का मैंने आपको बताया अभी, श्रवण का कितना महात्म्य है. अब तो दूर है भगवान से बहुत, देखा भी नहीं भगवान को कभी, लेकिन नारद मुनि, अंगिरा मुनि जैसे बहुत सारे ऋषि मुनि हमेशा उन दिव्य अच्छे राजाओं के पास में, धर्मशील राजाओं के पास में आया करते थे और मिलते थे उनको. और क्यों मिलते थे, क्या करते थे मिलकर? यहां वहां की पूछताछ तो करते थे लेकिन उनका मेन उद्देश्य यह था भगवत चर्चा, भगवत चरित्र वर्णन, आत्मशुद्धि, जन कल्याण, करुणा, ये उनका मेन उद्देश्य था. तो ऐसे खास करके नारद मुनि के संग में उन्होंने भगवान के हर एक बाल लीलाओं का श्रवण किया था रुक्मिणी ने, राइट फ्रॉम वेरी स्मॉल एज. जब से छोटी सी थी वो, तब से वो राजकन्याओं को भी ट्रेनिंग हुआ करती थी कि जब साधु आते थे तो राजकन्याएं भी उनकी सेवा करती थी। तो आश्रम महल में बैठकर उन्होंने जन्म से लेकर अनंत बार भगवान के सब बाल लीलाओं का श्रवण किया था, मक्खन चोरी, गौचारण, गिरिराज धारण, सब प्रकार की लीलाओं का श्रवण किया था उन्होंने। तब से उन्होंने हृदय में कृष्ण को वर लिया था कि यही मेरे पति है, पूरी तरह समर्पित, एब्सॉर्ब्ड कंप्लीटली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, गोपाल कॉन्शियसनेस। तो हम लोग को भी श्रवण के इस विधि पर बहुत विश्वास रखना चाहिए कि श्रवण में इतनी शक्ति है कि वो साक्षात भगवान को प्रकट कर सकती है। परीक्षित महाराज केवल श्रवण मात्र से ही श्री कृष्ण को प्राप्ति उन्होंने किया, श्री कृष्ण को प्राप्त हो गए वो केवल श्रवण, इसलिए श्रवण के आचार्य माना जाता है उनको। लेकिन वो आचार्य है, लेकिन सबके लिए श्रवण की महिमा लागू है। हम कहीं भी रहेंगे श्रवण मात्र से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, जीवन की उच्च प्राप्ति कर सकते हैं। तभी उसका विवाह का समय जब आया तब तक तो भीष्मक थोड़े से वृद्ध हो गए थे और रुक्मी एकदम जवानी के जोश में पूर्ण वीरता के साथ में सक्षम हो गया था। अब जानते हैं ना, जब भी बच्चा होता है तो वो पिताजी का सुनता है, बड़ा होता है तो पिताजी को सुनाता है। सब लोगों का यही है, जैसे ही पिताजी बूढ़े हो गए और बच्चा जवान हो गया और सक्षम हो गया और कमाने लगा, तुरंत पिताजी को उपदेश करेगा, डांटेगा, और बूढ़ा हो गया तो और डांटेगा। तो इस समय भीष्मक देव की, भीष्मक राजा की इच्छा है कि वो उसका कृष्ण के साथ विवाह हो जाए। लेकिन रुक्मी का दोस्त शिशुपाल, रुक्मी सोचता है कि नहीं, शिशुपाल क्या होना चाहिए, और शिशुपाल वगैरह तो कैसे है ना, एकदम कट्टर दुश्मन है, बॉर्न एनिमीज ऑफ कृष्ण। जिस जन्म लिया ना तो हम लोग सब रोते हैं ना, तो जन्म लिया तो उसने पहले ही मुंह खोला तो भगवान को गाली दिया, कैसा रहेगा ना वो जीव, आई कैनॉट इमेजिन एक्चुअली। अरे रोना तो मैं समझ सकता हूँ कि रो रहे, रोया बाबा कुछ भी चाहिए उसको कुछ, लेकिन पहला उसका जो एक्टिविटी है वो रोना नहीं है, वो कृष्ण को निंदा करना है। तो कृष्ण भगवान वहां पर थे जब उसका जन्म हुआ। और भाई देवी, ये कृष्ण की बुआ का लड़का है, कुंती की एक बहन है, उसका लड़का है ये। तो बड़ा परेशान हो गए सब लोग उसका ये सब देख के। और कैसे मालूम है, तीन सर और तीन पैर, ऐसा उसका अद्भुत रूप था जन्म में। हम लोग क्या करेंगे, एबनॉर्मल बॉडी बोलेंगे उसको, एबनॉर्मल बर्थ। तो व्हाट्सएप में पेपर में आता ना, फोटो आता ना कभी कभी, हमें छह उंगलियां वगैरह समझ सकते हैं हम लोग, लेकिन तीन सर और तीन पैर का कोई आदमी आपने देखा है क्या? तो उसकी माता परेशान हो गई। तो कृष्ण ने कहा कि ऐसा है कि जिसकी गोद में जाने पर उसके ये तीन सर के बदले में दो सर निकल जाएंगे, एक सर बचेगा और तीन पैर में से एक पैर जाएगा और वो नॉर्मल हो जाएगा, तो कितनी खुशी की बात है ना। लेकिन जीव भौतिक दुनिया में कोई भी खुशी प्योर खुशी नहीं होती है, उसके अंदर थोड़ा सा मिक्सचर होता है। तो माता इज वेरी हैप्पी कि अभी मेरा बच्चे का दो सर निकल जाएंगे और एक पैर में निकल जाएगा, नॉर्मल लगने लगेगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन कहता है जिसके गोद में ये दो सर और एक पैर जाके वो नॉर्मल शरीर प्राप्त करेगा, उसी के हाथ से उसका वध हो जाएगा। अरे बाप रे, अभी क्या किया जाए। तो सबके गोद में देती है उसको, तो किसी के गोद में कुछ नहीं होता है। आखिर में कृष्ण बचते हैं, कृष्ण के गोद में आते ही दो सर और एक पैर गायब, कितनी खुशी की बात है, नहीं कितनी दुख की बात है कि इसी के हाथ से उसका वध होगा। तो माता आती है हाथ जोड़कर, मेरे बालक को बचाओ, तुम्हारे हाथ से उसका वध होगा तो कैसे होगा, तुम भाई हो उसके, कुछ ना कुछ तो उशाप दे दो, उसको वरदान दे दो। तो कहते हैं मैं 100 अपराध उसके माफ करूंगा। तो आप लोगों को लगता होगा कि भाई 2001 में एक किया, 2003 में 15 किए तो 16 हो गए, फिर 2006 में और 15 किए तो 31 हो गए, ऐसे करके उसको 100 अपराध गिनने। नहीं नहीं नहीं, एक साथ एक प्रसंग में लगातार 100 पूरे करेगा तो मैं उसको मारूंगा। अब ये भी डिस्काउंट है बहुत ना, कि आप भाई 95 आज कर सकते हो फिर भी माफी आपको, अगले साल में 96 कर सकते हो, अगले साल में 98 कर सकते हो फिर भी आपको माफी है, वो तो हजारों की गिनती हो गई फिर भी 100 पूरे नहीं हुए, ऐसा वरदान मिलता है उसको। तो वो शिशुपाल जीवन भर उसके सांस धड़कन रोम रोम में केवल कृष्ण का अपराध, कृष्ण का द्वेष, यही उसका जीवन का सार है। जैसे भक्तों का जीवन का सार है भगवत प्रेम, वैसे उसका जीवन का सार है भगवत द्वेष। ऐसे भी लोग थे, ऐसे आज भी लोग है दुनिया में। तो उसके साथ में उसका विवाह करने का प्लानिंग है उसका। रुक्मिणी का इतना, अभी पुराने के जमाने में लड़कियां इतनी शालीन और कुलीन हुआ करती थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी कि पापा आई एम इन लव विद दिस बॉय आई विल रन अवे विथ हिम, ऐसा बोलते नहीं थे वो। जो बड़ा भाई पिता के समान होता है, जो पिता स्वयं अगर तय करेंगे, आगे भी कहानी बताऊंगा आपको मैं कैसे शालीन कुलीन कन्याएं माता पिता के अनुभव के द्वारा जो योग्य वर ढूंढते हैं उन्हीं को स्वीकार करते थे, यहाँ तक कि उनको देखते भी नहीं थे, कभी दर्शन भी नहीं करते थे। और लड़के भी ऐसे हुआ करते थे कि पिता माता के द्वारा नियत कन्या के साथ विवाह करते थे, उसका चेहरा भी ना देखते हुए, बोलो। इसलिए पुराने जमाने में हमें अनेक फिल्म आया करती थी कि वो पत्नी का मुंह ही देखा नहीं, पति का मुंह देखा नहीं, और सब लोग बारात ट्रेन में बैठ गई तो किसी और पत्नी के साथ में वापस चले आए, क्योंकि पता ही नहीं हमारी पत्नी कौन है। ऐसे बहुत सारी फिल्म कहानी हमने पढ़ी। ये हमारे हम लोग भी किसी विदेशी को कहानी सुनाएंगे तो हंसेंगे, बोले क्या कल्चर है आपका ये। लेकिन ये हमारे आदर्श और श्रेष्ठ संस्कृति का एक प्रतीक है। तो टेक्निकल गड़बड़ से वो एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन जो पीछे उसकी भावना है वो कितनी श्रेष्ठ है। तो एनीवेज रुक्मिणी बहुत परेशान है और दुखी है, पिता भी क्या कहते हैं हताश है, वो कुछ नहीं कर सकते, असहाय है। तो यहाँ क्या होता है, एंगेजमेंट भी, एंगेजमेंट होने वाला है, शादी का दिन तय हो गया है, सबको निमंत्रण गया है, सब राजा अपने अक्षौहिणी सेनाओं के साथ वहाँ पर आ रहे हैं, उनका तंबू की व्यवस्था की है, खाने की व्यवस्था की है, विवाह का दिन आगे आगे आ रहा है, ब्राह्मणों का व्यवस्था किया, सब करके घड़ी घड़ी आगे 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 आ रही है। और कल अभी विवाह है, आज रात को कल के विवाह की विधि भी हो रही है, मेहंदी भी लगाई जा रही है, श्रृंगार भी किया जा रहा है, अलग अलग प्रकार की विधि की जा रहे हैं। और वो व्याकुल हो रही है, वो कृष्ण को पुकार रही है। तो अभी उसके मन में आ जाता है कि अभी ये वो कहते हैं कि अभी डू और डाई, वो मन में सोच लेते हैं कि अगर मेरा विवाह अगर कृष्ण के साथ नहीं होता है तो मैं विवाह के पहले आत्महत्या कर लूंगी। लेकिन उसके पहले वो है ना शतराणी भी है ना, वशिष्ठा साहब ऑल्सो शतराणी, दे आर नॉट ऑर्डिनरी लेडीज, दे वेरी बहुत दे आर वेरी फाइटर लेडीज, दे डोंट गिव अप वेरी इजिली। सत्यवा में भी ऐसी थी। एनीवे सो वो एक ब्राह्मण को, अपने विश्वासु ब्राह्मण को चुनती है, और द मोस्ट फेमस लव लेटर इन द हिस्ट्री लिखती है। बहुत सुंदर प्रेम पत्र है वो भी नहीं पढ़ेंगे उसको। लेकिन ऐसा वो कहती है कि मैं आपको ये पत्र लिख रही हूँ, इसमें मैं एक निर्लज्ज स्वभाव का प्रकट कर रही हूँ उसके अंदर, कि आई एम एक्टिंग शेमलेस, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे लिए प्रसंग ही ऐसा है कि अगर मैं निर्लज्ज नहीं बनूंगी और प्रथा और विधि के अनुसार, मतलब आपको खत लिखना ऐसा अच्छा नहीं है किसी पराए मर्द को जो अभी तक पति नहीं बनाया मेरा, शादी किसके साथ हो रही है। इमेजिन ना, शादी किसके साथ तय हो गई है, सबको पता है कि शिशुपाल की पत्नी बनने वाली है, और वो किसी और को खत लिख रही है कि इट्स नॉट विद कल्चर, बोलते ऐसा मुझे पता है, फिर भी मैं इस निर्लज्ज भाव को स्वीकार करके आपको ये प्रकट कर रही हूं कि मैं आपको चाहती हूं, आपसे प्रेम करती हूं, आपका आपसे विवाह करना चाहती हूं। लेकिन समस्या यह है कि मेरा विवाह ऑलरेडी तय हो चुका है, अगर आप रातों रात मुझे लेने के लिए नहीं आओगे और मुझे उठाकर नहीं ले जाओगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मतलब न केवल अपना हृदय का भाव प्रकट कर रही है एक तरह से निर्लज्ज होकर, और ऊपर से बता भी रही है कि आपको करना क्या है, और साथ साथ में नम्रता का भी प्रस्तुतिकरण कर रही है। क्या बोल रही है कि मैं तो सब ये लिख रही हूं लेकिन मुझे पता नहीं आपके दिल में क्या है, आई डोंट नो व्हाट यू फील, इसलिए मैं तो आपकी सेविका हूं, शादी तो पत्नी बनने का कार्य है, लेकिन मैं आपकी सेविका बनना चाहती हूं, मुझे आप सेविका के रूप में स्वीकार कर लीजिए, अपना बना लीजिए, मैं इसके योग्य नहीं हूं, मैं जानती हूं मैं बहुत इनसिग्निफिकेंट हूं, तुच्छ हूं। यह भी भाव प्रकट करती है, बोल्ड भाव प्रकट भी करती है शतराणी का, और भक्त का नम्र भाव भी प्रकट करती है, और वो ब्राह्मण को भेज देती है रथ के साथ में। कुछ लोगों को पता चलता है, बाकी लोगों को पता नहीं है। रातों रात ब्राह्मण पहुंचता है, ब्राह्मण का स्वागत करते हैं, उसका सत्कार वगैरह हो जाता है, फिर पूछते ब्राह्मण का प्रयोजन क्या है, तो वो खत प्राइवेट में भगवान को दिखाता है, भगवान तुरंत दारुक को बुलाते हैं, उसी समय ये जरासंध आक्रमण कर रहे हैं। तो क्या करते हैं भगवान, पहले उसको जाते हैं और वो पर्वत पर चढ़ जाते हैं, वहां से आग लगाते हैं पर्वत को, फिर वो कूद जाते हैं, दोबारा आते हैं और फिर दारुक को बुलाते हैं, ब्राह्मण को रिसीव करते हैं। देखो कितना कॉम्प्लिकेशन है, एक तरफ आक्रमण हो रहा है, एक तरफ आपको प्रशासन भी देखना है, एक तरफ भक्त पुकार रहा है उसको संभालना है, क्योंकि तो करुणा जो प्रधान है ना वो उसको भगवान कभी छोड़ते नहीं है, चाहे राजनीति हो, युद्ध करना हो, कुछ भी हो, करुणा का जो प्रभाव स्वभाव भगवान का है ना, कहते हैं भगवान को करुणा का रोग है, करुणा जैसे वो ऑरेंज को दबाने के बाद निकलता है ना ऑरेंज जूस, वैसे भगवान को सर्व से वो करुणा का रस निकलता है हमेशा, सबसे प्रेम और बाकी सब जो रस है भगवान को उसके ऊपर करुणा का रस है उनका भक्तों के प्रति। तो वो वहां से कूदते हैं, क्यों छोड़ के आते हैं, क्योंकि अभी इसके साथ में युद्ध करने लगेगा लगूंगा तो वहां मेरे भक्त जो पुकार रही है उसका तो शादी हो जाएगी, फिर वो आत्महत्या कर लेगी, पता नहीं क्या करेगी वो। इसलिए खुद के कीर्ति को त्याग करके भगवान वापस लौट के आते हैं डरपोक के रूप में, पहाड़ से कूदते हैं, घर पे आते हैं, ब्राह्मण को रिसीव करते हैं, रथ तैयार करते हैं और रातों रात, ऐसा लिखा है भागवत में, रातों रात पहुंच जाते हैं वो, सच अ फास्ट जर्नी, और पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद भी खबर नहीं करते कि मैं आ गया हूं, सबको पता चलता है, भीष्मक आते हैं उनको रिसीव करते हैं सब कुछ, लेकिन अभी तक वो रुक्मिणी को खबर नहीं पहुंची कि आ गए, वो इतनी एंग्जाइटी में है क्या होगा मेरा क्या होगा मेरा। उतने वो ब्राह्मण को देखती है, ब्राह्मण जाके चुपचाप उसको बताता है कि श्री कृष्ण के बाद मिला मैं, वो गए निकल कर भी पहुंच गए यहाँ पर, लेकिन दर्शन नहीं हो रहा है अभी, पता नहीं ना कि वो अभी क्या करेंगे, अभी दर्शन नहीं दे रहे हैं, कुछ मैसेज नहीं आ रहा है उनकी तरफ से प्राइवेटली, ये दे रहे हैं कि मैं मिला वगैरह वगैरह। तो अभी अगले दिन वो विधि हो रही है उनकी की शादी के पहले अंबा देवी की पूजा होती है, और अंबा देवी पूजा में सारे जो सुहागन स्त्रियां हैं वो श्रृंगार करके, मतलब ससुराल की मायके वाली सारी जो बुजुर्ग स्त्रियां हैं श्रृंगार करके, नव नव परिणित दुल्हन जो होने वाली है उसको लेकर जाते हैं दुर्गा देवी के मंदिर में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर वो निकलती बारात, अभी तो आखिरी समय आ गया ना, अभी पूजा जो है वो शिशुपाल के नाम से की जा रही है, जो शिशुपाल इसका पति बनने वाला है, और वो दुर्गा मंदिर में पहुंच भी जाते हैं अंबिका के मंदिर में, और वहां पर विधि भी शुरू हो जाते हैं। आप सोचो अभी क्लाइमैक्स कैसा बढ़ रहा है, और वो सारे विधि में ऐसे मंत्र बोले जा रहा है, जिसमें हम बोलते हैं ना कि भाई अमुक तमुक पुत्र पौत्रिम, अमुक तमुक शर्मणः पौत्रिम, शर्मणः पुत्रिम, मतलब पिता का नाम, पिताजी के पिताजी का नाम, फिर शर्मणः पुत्रम, शर्मणः पौत्रम करके फिर बोलते हैं इति, बहुत सारे मंत्र होते हैं हमारे, तो उसमें शिशुपाल का नाम भी लिया जा रहा है, उसके नाम से मंत्र बोले जा रहे हैं, और जब इसके मुंह से उसके नाम से मंत्र बोलने का समय आता है तो ये श्री कृष्ण का नाम लेती है। समझो किसी कन्या को बताया जाए कि अभी आपको अपने ये पति का नाम डालकर ये मंत्र बोलना है, तो वो सबके सामने, सब बुजुर्ग स्त्रियों के सामने एक तरह से बोल्ड होकर, एक तरह से निर्लज्ज होकर वो सीधे इसी पराय मर्द का नाम लेती है। तो सारी जो बुजुर्ग स्त्रियां वो, अरे क्या पागल हो गए तू, तो शर्म नहीं आती, सब इतनी सभा के सामने, इतनी बुजुर्ग मेहमानों के सामने और स्त्रियों के सामने तुम किसी और का नाम लेती हो, फिर भी वो निश्चय पूर्वक दुर्गा के सामने, भट्टजी के सामने, पुरोहित के सामने कृष्ण का नाम लेती है। अभी मन में सब लोग क्रोध से जल रहे हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, अभी वो तमाशा करेंगे तो भी प्रॉब्लम, नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम, कूद रहे हैं अंदर से। वो विधि समाप्त होती है और वो जाते समय ना दोनों तरफ देख देख के जा रही थी, और दोनों तरफ जितने मेहमान आए हैं, जितने जवान या शादीशुदा या नहीं शादीशुदा, जितने भी युवक आए हैं, राजा आए हैं, राजकुमार आए हैं, वो सब लोग अपना जगह पकड़ के लाइन में खड़े, और कहते कुमारी अवस्था में इसका लास्ट दर्शन होगा, ये इसके आगे विवाहित रूप में दर्शन होगा। वो इतनी सुंदर थी वो, उसका 13 साल की उम्र में उसका भागवत में वर्णन दिया, इतना सुंदर वर्णन दिया उसका सौंदर्य का, उसको देखने के लिए सारे राजकुमार मेहमान लोग दुतर्फा खड़े हैं और धक्का मुक्की में भीड़ में खड़े हैं देखने के लिए। वो सब जगह देख रही है कहीं कृष्ण तो नहीं है इसके अंदर, उसने अभी तक कृष्ण को नहीं देखा है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, सुना है उसके बारे में, वो नीले रंग के हैं, पीताम्बर पहनते हैं, ढूंढ रही है ऐसे व्यक्ति को। आप समझो अभी किसी को ढूंढ रहे हैं, खाली उसका वर्णन सुना है आपने, और इतनी जनता, करोड़ों की जनता में आप उसको ढूंढना है वर्णन के ऊपर, कितना मुश्किल होगा। लेकिन उसके श्रवण साधना से उसके हृदय में कृष्ण की छवि प्रकट थी पूर्णता से, भाव से, और वो ढूंढ रही है फिर भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। मंदिर में जाती है फिर भी दिखाई नहीं पड़ रहे, मंदिर की पूजा पूरी होती है इस प्रकार से, और जब बाहर निकलती है तो बाई ओर श्री कृष्ण भगवान रथ में आरूढ़ होकर वहां पर खड़े हैं, एकदम स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे खड़े हैं, और कोई विधि विधि करने की जरूरत नहीं। और जैसे ही वो आती है, भरी जनता के सामने, सब बुजुर्ग स्त्रियों के सामने, उसका कवच है ना पूरा, एक स्त्रियों का कवच है, सैनिकों का कवच है, फिर कुछ ब्राह्मणों का कवच है, सब राजकन्या है, वो सबको भेद कर जाकर उसका हाथ पकड़ते हैं, सीधे लेकर रथ में चढ़ाते हैं उसको, जैसे कोई कहते हैं ना कोई भेड़ियों के बीच में से कोई सिंह जो है, बड़ी शान के साथ में, विश्वास के साथ में, आत्मविश्वास और निश्चय पूर्वक और बिना डर के आकर अपने हिरण को ले जाता है। ये वाक्य पढ़ने पर मुझे बहुत स्फूर्ति आती है हमेशा, ऐसा अपना नायक होना चाहिए, द हीरो शुड बी लाइक दिस, है ना, सबके बीच में से एकदम शान से उठा कर ले जाते हैं उसको। वो भी बड़े आनंदित होकर, देखो आप सोच सकते हैं रुक्मिणी का भाव, पहली बार अपने प्रियतम को वो देख रही है, पहली बार उसको दर्शन कर रही है, पहली बार उसका स्पर्श हो रहा है और पहली बार उसको वो स्वीकार कर रहे हैं पत्नी के रूप में, कितना थ्रिल रहेगा उसके अंदर। हाँ, इतने सालों की मेरी तपस्या, इतने सालों का मेरा चिंतन, इतने सालों का मेरा प्रयास, इतने बीच के कुछ दिनों का कश्मकश संघर्ष, कितना कष्ट हुआ उसको, क्या होगा पता नहीं ना भविष्य में, क्या मृत्यु पाओगे मैं आत्महत्या करके, क्या दूसरे सुपाल शादी करना पड़ेगा, क्या क्या होगा पता नहीं। इतने संघर्ष में, इतने अस्थिरता में उन्होंने अपने कुछ दिन बिताए हैं पिछले, उसका क्लाइमैक्स क्या है कि फाइनली वो उसका लक्ष्य जो है उसका सामने प्रस्तुत है, भगवान खड़े होते हैं। और ऐसा भी वर्णन किया है कि जब वो जा रही थी उस रास्ते में से, तो एक 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 वीर जो है वो बेहोश होकर रथ घोड़े में से नीचे पीछे गिर रहा था। क्यों? काम वासना से इतना प्रभावित होकर, ओवरवेल्म विथ लस्ट इन द हार्ट, हाँ इतनी जागृत हो रही है उसके सौंदर्य को देखकर, भोग की भावना से वो बेहोश होकर गिर रहे हैं काम वासना से। वो सब उठ जाते हैं एकदम कुछ देर के बाद में, अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है, देखो देखो एक ग्वाला आकर ले जा रहा है उसको। तो सब लोग तुरंत उठ के खड़े हो जाते हैं, शस्त्र धारण करते हैं, अपने आप को संभालते हैं काम वासना के प्रभाव से जो कमजोर हो गए, संभालते हैं और फिर जाते हैं। और कृष्ण भगवान जा रहे हैं आगे, सब लोग सावधान करके आक्रमण के लिए उनको आह्वान देते हैं। तो भगवान एकदम बोलते हैं कि ऐसे कहते हैं कि भगवान आराम से यू टर्न लेते हैं, बहुत ही शांति से एकदम, कोई एजिटेशन नहीं कुछ नहीं, और लीलया यानी कि लीला की तरह आनंद में उन सबको परास्त कर देते हैं। कहते हैं किसी के हाथ पांव तोड़ देते हैं, किसी का रथ तोड़ देते हैं, इसका मुकुट फेंक देते हैं इधर उधर, और आराम से वापस यू टर्न लेते हैं और द्वारका की ओर जाने लगते हैं। ये सब जब हो जाता है, अभी आप देख सकते हैं ना इतनी करोड़ों की संख्या, इतनी भगदड़ मचती है, सब बुजुर्ग स्त्रियां भाग जाती है, सब यहाँ पर युद्ध हो रहा है, तो पता नहीं एकदम उत्सव का वातावरण था, एकदम क्या हो गया इधर। वो सब खबर जो है रुक्मी को पहुंचती है, तब हमारे शिशुपाल महाराज मेकअप कर रहे हैं, मेकअप रूम में उनका मेकअप हो रहा है, दुल्हा बन रहा है बेचारा, बहुत सारे लोग तो मित्र लोग उसका श्रृंगार कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग गीत गा रहे हैं, लोग उसके भाग्य को सराहना कर रहे हैं कि देखो तू कितना भाग्यवान है, रुक्मिणी तेरी पत्नी बनने वाली है, बड़े आनंद से वो श्रृंगार कर रहा है। उसमें रुक्मिणी आता है, कहता है शिशुपाल तुमने सुना क्या हुआ? रुक्मिणी को कृष्ण उठा के ले गया। क्या? मेरी पत्नी को उठा के ले गया, अभी जाता हूं उसका वध करता हूं, और एक्स वाई जेड गाली देता है उसको। रुक्मी कहता है अरे रुक जा यार, तू रुक जा, तू तो दूल्हा है, तो अपना श्रृंगार चालू रख, मैं हूं ना, मैं किसके लिए हूं, मैं जाता हूं और उस कृष्ण को पकड़ कर लेके आता हूं, उसका वध कर देता हूं, और हे मेरे मित्र शिशुपाल, मैं आज आपको वादा करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि श्री कृष्ण को मारे बिना मैं विदर्भ नगरी में लौट कर नहीं आऊंगा। आप लोग हंसते नहीं हो इसको सुनकर? कैसा मूर्ख प्रतिज्ञा कर रहा है वो व्यक्ति। हाँ मतलब ओके, मैं जाके देखता हूँ, जरा देख के आता हूँ, वो ठीक है, अपने राज्य में लौट कर नहीं आऊंगा, ऐसे पहले बोल दिया उसने। जाता है फिर उस सैन्य लेकर, अब तक कृष्ण आगे कुछ अंतर जाए होते हैं, उधर से बलराम जी आते हैं, पता है ना कि कृष्ण भगवान रातों रात निकल गए अकेले, तो कुछ गड़बड़ तो होने वाला है, समथिंग इज एक्सपेक्टेड टू हैपन। तो बलराम भी सेना लेकर तब तक पहुंच जाते हैं, आधे रास्ते पर पहुंच जाते हैं, बलराम जी ऐसे आ रहे हैं, कृष्ण ऐसे आ रहे हैं, पीछे से रुक्मी कहता है सावधान, मुझसे युद्ध किए बिना तुम यहां से जा नहीं सकते, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। भगवान फिर से आराम से यू टर्न लेते हैं। इस बार रुक्मिणी बहुत टेंशन में है क्योंकि सामने भाई है, रथ में अपना प्रिय पति जो अभी अभी प्राप्त हुआ है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, अभी इनका युद्ध होने वाला है, अभी क्या होगा इस युद्ध में, बहुत उसको चिंता है। हृदय फिर वो दोबारा आनंद का जो घटना थी, बाकी सब लोगों को परास्त कर दिया तो खुशी हो गई उसको, अभी बहुत वापस कश्मकश, वापस आत्मशुद्धि, वापस प्यूरिफिकेशन। यू कैन इमेजिन उसी रथ में खड़ी है जहां से वो भी आक्रमण होने वाला है, तो बहुत भयंकर युद्ध होता है उनके अंदर, और इतना घमासान युद्ध होता है कि फिर रुक्मी को भगवान इतने बाणों से जर्जर कर देते हैं, रथ में से गिरा देते हैं, रथ को तोड़ देते हैं, रथ में से गिराकर उसको जमीन में बाणों से गाड़ देते हैं, मतलब ऐसे बाण मारते हैं कि वो ऐसे जमीन में फिक्स हो जाता है कि उसका हाथ भी नहीं हिलता है, पैर भी नहीं हिलता, कुछ भी नहीं हिल सकता है। और फिर भगवान रथ से उतरकर नीचे आते हैं और भी योद्धा को क्या करते हैं, वैसे होते तो उसको मार देते उसके बाद में। तो रुक्मिणी भी बहुत परेशान है, दुखी है, उसमें से वहां बलराम आते हैं, वो कहते हैं हे कृष्ण तुम कैसे हो, कैसे व्यक्ति हो तुम, देखो भाभी को देखो कितना टेंशन आ रहा है, तो हमने पढ़ा है कि वो अपने नई नई भाभी के ऊपर एक अपना इम्प्रेशन जमाना चाहते थे कि मैं इनका बड़ा भाई हूँ, बाय द वे मैं आपके पक्ष में, देख नहीं रहे हो कि रुक्मिणी देवी को कितना परेशानी है इसकी वजह से, तुम उसके सगे भाई जिस पर वो प्रेम करती है उसको मारने जा रहे हो, कुछ सोचो अपने नवपरिणित पत्नी के बारे में, उसकी भावनाओं के बारे में। तो फिर कृष्ण भगवान पूछते हैं क्या किया जाए, अभी इसका दंड तो देना है उसको। तो कहते हैं कि क्षत्रियों को अपमान करना उनके मृत्यु से बढ़कर होता है, तो इसको अपमानित करो। तो वो तलवार से उसके बाल ऐसे काटते ना, इधर थोड़े इधर थोड़े इधर थोड़े, उसके आधी मुझ काट के आधी में छोड़ देते हैं, आधी दाढ़ी को निकाल देते हैं, सब विद्रूप कर देते हैं उसको और छोड़ देते हैं उसको वहां से। अभी बेचारे का प्रॉब्लम क्या पता है आपको, उसने प्रतिज्ञा किया था ना कि मैं लौट कर नहीं आऊंगा, लौट कर नहीं आऊंगा। अभी वो क्षत्रिय है, वो पालन करना है उसको। तो वहां से वो टेंजेंशियल मतलब जाता ना लौट के, वहीं से एक अपना राज्य बचा देते। उसका नाम को याद नहीं आ रहा है, आगे जाकर बलराम जी ने वहीं पर उसका वध किया है, वहां पर जाकर अपना पूरा किंगडम बना देता है और शिशुपाल का सारा मेकअप वेस्ट हो जाता है शिशुपाल दुखी होकर फिर लौट के जाता है, अपना द्वेष को और हजारों गुना बढ़ाकर वापस चला जाता है वो उसके देश में। और फिर रुक्मिणी का आगमन, भीष्मक देव, फिर भीष्मक राजा आते हैं, उनको दहेज देते हैं उनको, और द्वारका नगरी में जाकर उनका विवाह होता है। तो ये पहला विवाह है भगवान का रुक्मिणी स्वयंवर। अपने पास कितना टाइम है? हाँ, बहुत टाइम है। तो रुक्मिणी के विवाह प्रसंग में कई चीज़ें सीखने को मिलती है हमको। रुक्मिणी का चरित्र नंबर वन, कैसे भगवान की प्राप्ति के लिए हमको रिस्क भी लेना चाहिए, हार नहीं जाना चाहिए। भक्त का निश्चय जो होता है ना, वो कभी कभी शास्त्र के विरुद्ध भी काम कर सकते हैं वो, जैसे उसको नहीं करना चाहते, ऐसे शादी दाई हो रही है तो किसी पराय मर्द को खत लिखना नहीं चाहिए। लेकिन वो पराय मर्द कोई ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं था, कोई और राजा नहीं था, वो श्री कृष्ण भगवान स्वयं थे, इसलिए उसका शास्त्र विरुद्ध जो व्यवहार है वो भी दिव्य और आध्यात्मिक है। उसमें उसका निश्चय, उसमें भक्ति, उसकी लगन दिखाई पड़ती है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति के लिए ऐसे अनेक लोगों ने बहुत सारा चीज किया हुआ है, उसमें से एक रुक्मिणी का है चरित्र। साथ साथ में उसकी नम्रता, वो सब कुछ प्रयास कर रही है पत्नी बनने का उसका, लेकिन अपने आप को योग्य नहीं समझ रही वो। एक तरफ उसके मन में विचार है कि मैं उसके योग्य नहीं हूँ, वो मुझे स्वीकार करेंगे तो सब ये कुछ बोनाफाइड हो जाएगा, अगर मेरा सारा ये अयोग्य और अनबोनाफाइड हो जाएगा जो अगर वो स्वीकार ही नहीं करेंगे, तो एंग्जाइटी भी है, फिर भी वो अपने हृदय को भाव को प्रकट कर रही है भगवान के सामने। और श्री कृष्ण भगवान की करुणा दिखाई पड़ रही है, हमको विश्वास होना चाहिए कि अगर हम पुकार रहे हैं तो वो सुन रहे हैं निश्चित रूप से, ऐसा सुन रहे हैं कि अपना कोई इंपॉर्टेंट कीमती काम छोड़कर भी वो आएंगे आपके पीछे। अपना कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होगा, कोई काम करते होंगे कोई जरूरी, वो भी छोड़ के आएंगे भक्त के पीछे, क्योंकि उनके सारा कर्तव्य के सामने भक्त को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है उनका। ऐसे कई बातें रुक्मिणी के स्वयंवर में दिखाई पड़ती है। और जब भगवान सामने आकर कोई कृत्य करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो भक्तों की भक्ति बढ़ती है और द्वेषियों का द्वेष बढ़ता है। एक साथ में दो चीजें हो रही है, एक ही प्रसंग में, एक ही लीला में, उसको सुनकर उसको देखकर भक्तों का हृदय तो उल्लसित हो रहा है, लेकिन शिशुपाल रुक्मिणी जैसे लोगों का जो है वो द्वेष बढ़ रहा है। सब लोग आक्रमण करते हैं, सब लोग परास्त हो जाते हैं। जरासंध भी वहां पर सेना लेकर आए थे, बहुत बड़ी, जानते थे कृष्ण आए हैं तो कुछ गड़बड़ होगा इधर, सब लोग तैयार थे, लेकिन सबको भगवान ने परास्त किया उधर, एक भक्त के लिए। सोच सकते हैं आप, जैसे हम लोग अभी पुराने जमाने में ना, हर सैटरडे को राधानाथ महाराज कई हजार लोगों का एक सत्संग किया करते थे, कभी बोरीवली में, कभी अंधेरी में, उसमें से एक एक भक्त आए। अभी पता चलता है आपको कि वो बोरीवली से ये भक्त आए थे, उसमें से ये भक्त आए थे, फ्रॉम दैट प्रोग्राम आई बिकेम डिवोटी। तो आप सोच सकते हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना खर्चा, इतने लोगों का भोजन, इतने बड़ा आयोजन, किसके लिए? एक भक्त बनाने के लिए। अगर हम बोलेंगे महाराज इट इज इकोनॉमिकल, इज इट वर्थ, ये अच्छा है क्या इतना खर्च करना एक भक्त बनाने के लिए? बोले एक भक्त के लिए क्या नहीं करना चाहिए, एक भक्त कितना कीमती होता है, क्योंकि वो एक आदमी भक्त बन गया तो हजारों को भक्त बना सकता है। ऐसा एक पूरा प्रोग्राम उसके द्वारा हो सकता है, सब भक्तों का उसके द्वारा निर्मित। तो वी कैन अंडरस्टैंड द पोटेंशियल, एक भक्त के अंदर कितनी शक्ति होती है, वो क्या कर सकता है कृष्ण के लिए। इसलिए अभी तो लगता है कि वो सिगरेट पीने वाला ऐसा एक कॉलेज का स्टूडेंट है,
अभी वो आ रहा है जप करने के लिए, लेकिन बाद में जाकर वो कोई स्वामी बनकर गुरु बनकर हजार लोगों का उद्धार करेगा विदेश में जाकर। अगर अपने आचार्यों को इस विश्व में रहते हुए ऐसी अंडरस्टैंडिंग है तो भगवान की अंडरस्टैंडिंग क्या है भक्तों के बारे में, उनके लिए कितना कीमती है भक्त अपना, चाहे वो लाखों में से एक हो भक्त, कोई एक कोई लड़की वहां पर रो रही है मुझे पुकार रही है, इतनी बड़ी सेना का युद्ध छोड़कर जा रहे हैं वो महत्व तो दिखा दे कि मेरे लिए भक्त कितना कीमती है। इसलिए हमें कभी भी भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की दृष्टि में एक नौसिखिया भक्त भी हो, कोई पुराना भक्त भी हो, कोई मंझला हुआ खिलाड़ी भक्त हो, फिर भी वो भगवान की दृष्टि में वो उसको प्रेम ही करते हैं, वो कभी उसको जूनियर सीनियर का भेदभाव नहीं करते हैं। भक्त इज भक्त, अगर भगवान को उसने वर लिया है अपने भगवान के रूप में तो भगवान उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद में सत्यभामा का विवाह का प्रसंग आता है। अभी सत्यभामा का इतिहास ऐसा है कि सत्यभामा सत्राजीत की कन्या थी और सत्राजीत द्वारका में रहते थे, ये सब द्वारका लीला है, तो द्वारका में रहते थे। और सत्राजीत को जब कन्या हुई तब जब श्री कृष्ण भगवान कम से कम वो 15-18 साल के होंगे मिनिमम, क्योंकि 10 साल 11 साल 52 दिन की उम्र में वो व्रत छोड़ के जाते हैं, उसका मथुरा में कुछ दिन रहते हैं, ये 17 बार युद्ध करते हैं, उसके बाद में शिफ्टिंग करते हैं, तो कुछ साल बीत गए होंगे, मतलब भगवान एकदम युवा अवस्था में, अभी 16 साल के आगे उनकी उम्र जा चुकी है, शरीर 16 साल का है लेकिन उम्र जो है वो 20-22 साल की है शायद। तो जब वो आए तभी ये छोटी सी कन्या थी। ऐसे गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी लिखते हैं कि सत्राजीत का घर जो था उसके घर में जो छत था, वो भी जब घर में कोई कन्या होती है ना तो वो कोई भी घर का भाग एक्सपोज नहीं होता है, क्योंकि कन्या को किसी ने देखना नहीं चाहिए। लेकिन ये कन्या जो है इनका जो ऐसा होता ना कि कांच होती है संगमरमर की, मतलब वो बिलोरी संगमरमर का फ्रेम होता है, उसके अंदर जाली होती है संगमरमर की, ताकि बाहर का आदमी देख नहीं पाएगा, अंदर का आदमी बांस में आएगा तो बाहर का क्या है देख पाएगा, ऐसी व्यवस्था होती है। जब घर में उपवर अविवाहित कन्या होती है तो ऐसी व्यवस्था होती है, उसको संभाल के रखते हैं, और बाहर जाना भी होता है तो डोली में देखे बंद करके ब्राह्मण सैनिक साथ में लेके जाते हैं उसको, भाई दर्शन करना देवी का कुछ पूजा करना है तो, लेकिन बाहर का कोई परपुरुष उसको दिखता नहीं है। तो ये श्री कृष्ण भगवान को अपने कमरे के जालीदार व्यवस्था से देखा करती थी आते जाते, और तो राजकन्या थी वो, सत्राजीत में बड़े अधिकारी थे, बहुत ऐश्वर्य संपन्न थे वो, तो रोज बहुत बढ़िया श्रृंगार करके वो वहाँ पर आती थी और वो जाली में बैठकर कृष्ण की राह देखती थी और दर्शन करती थी। तो ऐसे जीव गोस्वामी लिखते हैं कि रोज उनको देखकर उनके मन में प्रेम के फव्वारे निकलते थे, प्रेम के अश्रु निकलते थे, और वो अश्रु जो है उसके काजल को लेकर निकलते थे और जमीन पर गिरते थे, और वहां पर बहुत साल के बाद में कालिंद पर्वत जैसा काजल का एक पर्वत बन गया था। कैसे? आंखों से आंसू निकल रहे हैं काजल को लेकर, जमीन पर गिर रहे हैं, फिर कुछ समय बाद में जो आंसू है वो बाष्प होकर निकल जा रहा है नीचे जमीन पर, वो काजल बचेगा जो कि 1 मिलीग्राम 0.5 मिलीग्राम जो उसमें था। ऐसे रो रोकर जो जितने भी अश्रु गिरे, जितने अश्रु बाष्प हो गए और जितने काजल वहां जमा हो गया, वो काजल का एक पर्वत हो गया था उसके महल में, ऐसे जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं। मतलब उसने प्रेम के कितने आंसू बहाए होंगे उसके लिए। ये जब राधानाथ महाराज जी ने सुना था तो बहुत भाव विभोर हो गए थे सुनकर, मुझे पूछ रहे थे कि तुमने कहाँ से पढ़ाई, मैंने बताया मैं जीव गोस्वामी की किताब से पढ़ा, इतना प्रेम था सत्यभामा को भगवान के प्रति। तो वो सत्राजीत उसके पिताजी थे, तो वो सूर्यदेव की पूजा करते थे। देखो ये मत समझना कि भगवान के होते हुए ऐसे कैसे हो सकता है, अरे भगवान के होते हुए तो शिशुपाल था, कंस था, जरासंध था, सब लोग भगवान के साथ में थे, वो दुर्योधन भी भगवान के साथ ही था ना, वो दर्शन किया था उसके, इसलिए भगवान का दर्शन करके कुछ नहीं हासिल होता। जो भक्ति भाव से देखता है उसके हृदय की शुद्धि होती है। जब हम भक्ति भाव से वृंदावन बिहारी के सामने आते हैं तो हमारा सारा पाप प्रवृत्तियां और अशांति वो छीन लेते हैं, लेकिन कोई ऐरा गहरा आया तो बोलेगा इतना क्यों इतना ऑपुलेंट पूजा करते हैं इनकी, ये भी पत्थर की पूजा करते हैं, क्यों कर रहे हैं, इतना वेस्ट ऑफ टाइम, इतने गरीब लोग वहां पर भूखे पड़े हैं, उनको खाना खिलाओ ना, इतना बड़ा मंदिर बना के फूल वूल अर्पण क्यों कर रहे हैं, इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं, अरे बाप रे इतना लीटर दूध डाल के उनका अभिषेक कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। ये देशी लोगों की मन की भावना है।
वैसे सत्राजित है, परम भगवान, परम पुरुषोत्तम, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, द्वारकाधीश बनकर उनके सामने विराजमान है, और अधिकतर लोग जानते भी इसको, फिर भी वो सूर्यदेव की पूजा कर रहे हैं। वो सूर्यदेव भी ऐसा कहते हैं कि सूर्यदेव भी उनके बहुत ही निकट के मित्र बन गए उनके रोज के आदान प्रदान से। तो सूर्यदेव ने उनको समंतक मणि प्रेजेंट किया। तो ये मणि जब मिला उनको मित्रता में सूर्यदेव के साथ पास से, तो वो गले में पहनकर उसको द्वारका में आ रहे हैं, और इतना वो मणि प्रकाशमान है कि सत्राजित नहीं दिख रहा है उसके अंदर कुछ। यू अंडरस्टैंड, तो मैं कुछ गहना पहन के आया हूँ तो ये आपको गहना भी दिखेगा और मैं भी दिखूंगा ना लेकिन ये मणि इतना प्रकाशित है, प्रभावशाली है कि वो इतना प्रकाश है कि मानो सूर्यदेव स्वयं ही चल के आ रहे हैं और कोई दिखाई नहीं पड़ रहा उसके अंदर। तो द्वारकावासियों को लगा कि सूर्य भगवान, जैसे बहुत देवता लोग आते हैं भगवान को मिलने के लिए, सूर्य भगवान भी आते हैं, तो भाग भाग के भगवान को बताने के, तब भगवान चेस खेल रहे थे, हाँ द्यूत खेल रहे थे रुक्मिणी के साथ। तो उन्होंने कहा कि भगवान भगवान सूर्यदेव आपको मिलने आ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि अरे वो सूर्यदेव नहीं है, वो सत्राजित है, वो अपना मणि लेकर आ रहे हैं। लेकिन उसको लगता है सबको कि वो सूर्यदेव जो रूप, मतलब जो सूर्यदेव के रूप में उनको लग रहा आ रहा है, वो भगवान को मिलने को आ रहा ऐसा लग रहा है वो। लेकिन ये व्यक्ति भगवान को मिलने गया ही नहीं, सूर्य अपने घर चला गया और घर के बाहर उसने एक मंदिर बनाया, उस मंदिर में इस मणि को रखा, उसकी पूजा करने लगा। प्रभुपाद जी बताते हैं कि दो कुछ इसका यूनिट है, एक 170 पाउंड, एक पाउंड कितने किलो होता है, 2.2 किलोस। हाँ डॉक्टर साहब 2.2 किलोस, हाँ 2.2 पाउंड का एक किलो बनता है ना। इस प्रमाण से 170 पाउंड आप गिनो, कुछ 100 के ऊपर किलो निश्चित रूप से होगा। इतना किलो सोना रोज वो देता था मणि, और उससे वो रोज यज्ञ करके वो सोना ब्राह्मणों को दान वगैरह करते, भव्य रूप से उसका ऐश्वर्य बढ़ता था। तो भगवान ने उनको बताया कि सत्राजित तुम राज्य के एक नागरिक हो, तुम्हारे पास कोई मूल्यवान वस्तु होती है तो राजा के मालिक, राजा उसका मालिक है, राजा को देना चाहिए उसको। सत्राजित उस मणि से इतना आसक्त था, उसने मना कर दिया, भगवान के कहने पर भी मना कर दिया और अपना ही घर पर रखा उसको। एक दिन देखो कैसा है ना, भगवान अभी उनको लग रहा है कि भगवान लोभी है, उनको लग रहा है कि कृष्ण स्वयं लोभी है, उनको ये मणि चाहिए। तो लेकिन भगवान खुद के लिए नहीं चाह रहे उनको, तो सभी अनंत कोटि लक्ष्मियों के मालिक है वो, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से व्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। लेकिन वो एक नीति, एक जो राजनीति है उसको प्रमाण करके समझा रहे हैं, सत्रजी उसको नहीं मान रहे। तो राजा उसका भाई है प्रसेन, वो एक दिन क्या है खेल खेल में उस मणि को गले में डालकर अपना बोलते ना शोभा लोगों को दिखाने के लिए घोड़े पर बैठकर घूमने लगता है, और घूमते घूमते जंगल में चला जाता है। वो जंगल में जाते क्या होता है, एक भयंकर खूंखार शेर जो है वो उस पर आक्रमण करता है, क्योंकि ना वो उस मणि के प्रभाव को देखकर, प्रकाश को देखकर आकर्षित हो जाता है कि व्हाट इज दिस। तो घोड़ा आ रहा है, घोड़े पर वो मणि है, वो व्यक्ति बैठा हुआ है, तो उसको वो अटैक करता है, घोड़े को मार डालता है, प्रसेन को भी मार डालता है, और वो चमकता हुआ मणि लेकर शेर चला जाता है। ये सब जो धुआंधार लड़ाई होती है शेर की और उसकी, उससे जाम्बुवंत नाम के भगवान के एक भक्त हैं रामायण के टाइम के, ऋक्षराज जाम्बुवंत, जाम्बुवान, उन्होंने भगवान का बड़ा सेवा किया है रामायण में, रामलीला में, वो उनको वरदान है कि वो चिरंतन चिरंजीवी हैं। तो त्रेतायुग के बाद द्वापर युग में भी जीवित है वो जंगल में रह रहे हैं अपनी गुफा में। कोई उनको एक कन्या है जाम्बवती और एक छोटा सा पुत्र है, उसका नाम सुकुमार है। तो वो देखता है इतना आवाज से भारत देखता है कि एक शेर जो है, सिंह जो है, वो घोड़े को और प्रसेन को मारकर एक चमकता हुआ मणि लेके जा रहा है। तो वो फिर वो उस पर आक्रमण करते हैं, और इतने खूंखार जानवर को जाम्बुवान जो है बिना कोई शस्त्र से केवल हाथ से मार देते हैं, विच इज इम्पॉसिबल। केवल हाथ से बिना शस्त्र से वो सिंह को मार देते हैं और वो मणि लेके जाते हैं, और वो इतने बड़े भगवान के भक्त हैं, उसको उस मणि से कोई आसक्ति नहीं है। आसक्ति है लेकिन उतनी नहीं है कि आखिर कबड़ में तिजोरी में रखेगा उसको, उसके प्रकाश से अट्रैक्ट होकर ही वो जाकर उसको सिंह को मारते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन इतना प्रभावित नहीं है कि वो उसको, अरे बाप रे इतनी बड़ी कीमती वस्तु उसको अंदर रखा जाए संभाल के, नहीं अपने बच्चे को सुकुमार को खेलने को देते हैं, खेल बेटा खेल। तो गुफा में जो है वो दासी है एक, उसके साथ वो देखभाल कर रही है बच्चे की, और बच्चा जो है खिलौने के साथ तरह उसके साथ खेल रहा है। ये घटना अभी वहां पर हो रही है। यहां पर क्या होता है कि मेरा भाई जो है वो मणि लेकर चला गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो सत्राजीत जो है वो ऐसे रूमर यानी क्या अफवाह फैलाता है कि कृष्ण भगवान ने मुझसे मणि मांगा था, उसी कृष्ण ने इस लोभ की वजह से मेरे भाई का वध करके मणि चुराया होगा। जानबूझ के पूरे द्वारका में वो फैलाता है। भगवान की बड़ी बदनामी होने लगती है उसकी वजह से, अपकीर्ति होने लगती है। तो भगवान सोचते कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे इस अपकृति को सत्य साबित करना चाहिए, सत्य क्या है, क्योंकि उन्होंने तो नहीं किया है। तो वो द्वारका के कुछ गिने चुने अधिकारियों को लेकर चले जाते हैं, ताकि वो साक्षी भी हो ना सत्य देखने के लिए। उनको लेकर वहाँ जंगल जाते हैं, जंगल में देखते हैं शेर मरा हुआ है, एक सिंह मरा हुआ है, एक प्रसेन भी मरा हुआ है, घोड़ा भी मरा हुआ है, और सब उनको पता चलता है क्या हो रहा है। तो वो जानते हैं कि ये गुफा में जांबुवान है, वो सब पता करते हैं, मतलब आफ्टर सम टाइम ही स्टडीज एवरीथिंग। और गुफा अंधियारी है बहुत, तो लोग डर रहे हैं अंदर जाने के लिए। तो भगवान कहते हैं बाहर रुको, मैं जाता हूँ अंदर। और कहते हैं कि भगवान जब उस गुफा में प्रवेश करते हैं, उनके शरीर के प्रकाश से वो गुफा जो है प्रकाशित हो जाती है दिव्य आभा से, और आगे चले जाते हैं बहुत दूर तक। तो वहाँ पर उनको एक बच्चा जो है वो शमंतक मणि के साथ खेलते हुए नजर आता है। भगवान उनके सामने खड़े हो जाते हैं, उसके हाथ से मणि ले लेते हैं। उसको देखकर वो जो दासी है वो डर जाती है बहुत, और आक्रोश करती है, बचाओ बचाओ, आपके बालक को कोई ईजा करने के लिए कोई आ रहा है। भाग जाते अंदर। उसकी आक्रोश सुनकर जांबुवान बाहर करके आते क्रोध से, क्योंकि सुनते ना कि आपके बालक पर कुछ आक्रमण हो रहा है, तो वो क्रोध से आते हैं बाहर। और देखते हैं कि श्री कृष्ण खड़े हैं, उनके हाथ में मणि है, तो वो मणि श्री कृष्ण बाजू में रखते हैं, वो श्री कृष्ण के ऊपर आक्रमण करते हैं। वो आचार्य बताते हैं कि अरे वो तो प्रभु रामचंद्र के इतने बड़े भक्त थे, वो श्री कृष्ण को कैसे नहीं पहचाना उन्होंने। उन्होंने कहा अगर भक्त भी कोई होगा ना, अगर क्रोध के वश में जाता है तो उसकी दिव्य दृष्टि नष्ट हो जाती है, उसकी जो असली पहचान है वो भी नष्ट हो जाती है। जब कोई भक्त भी होगा अगर इंद्रियों के भोग के भाव में आ जाता है, तो उसकी जो चेतना उसने कमाई हुई है बहुत मेहनत से, वो कुछ समय के लिए क्यों ना हो नष्ट हो जाती है। अब ये क्रोध के आवेश में आ रहे हैं ना, क्रोध का पर्दा उनके आंखों के सामने है, तो प्रभु रामचंद्र प्रभु कृष्ण के सामने रूप में उनके प्रकट है, फिर भी वो पहचान नहीं पा रहे हैं, उनके साथ युद्ध कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। तो पहले वो लोग शस्त्र से लड़ते हैं, धनुष गदा बाण चक्र सारे लड़ते हैं, फिर धनुष शस्त्र फेंक देते हैं, फिर पत्थर उठाते हैं, खड़क उठाते हैं, उससे युद्ध करते हैं, फिर पेड़ उठाते हैं, फिर वो भी छोड़ देते हैं, फिर मुष्टि युद्ध करते हैं, 1-to-1 फाइट कॉम्बैट, और 28 दिन और 28 रात तक लड़ते रहते हैं, और कोई किसी को परास्त होने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब दिन 28-27 हो जाते हैं, तो जांबुवान थक जाते हैं, जांबुवान के सारे जो लिम्स यानी कि जो उसकी भुजाएं वो टुकड़े हो जाते हैं, फ्रैक्चर्ड, ऑल लिम्स फ्रैक्चर्ड, सब जगह कमजोरी, गले तकातर हो जाते हैं, स्नायु में शक्ति खत्म हो जाती है। तब जाकर उसको एक अनुभूति होती है अंदर से, उनको पता होता है कि मैं इतना शक्तिशाली हूं, सिवाय भगवान के मुझे कोई मुष्टियुद्ध में परास्त नहीं कर सकता है। तब उसको अनुभूति, अरे बाप रे, ये तो मेरे भगवान है, स्वयं मेरे भगवान मेरे सामने युद्ध कर रहे हैं, और भगवान ही हो सकते हैं। तब जाकर तुरंत शरण जाते हैं उनको, कहते भगवान मुझे माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। जब क्रोध समाप्त हुआ, अपन उठा था राग झिरला है, जब क्रोध समाप्त हुआ तब सत्य का प्रकाश हुआ, सत्य प्रकट हो गया हृदय में चेतना के रूप में। भगवान को शरण जाते हैं, और भगवान क्या करते हैं, अपने हाथ के पंजा से बहुत मृदु तरीके से उसके पूरे हाथ शरीर में हाथ घुमाते, रब कब इज प्रभुपाद सेज कृष्णा स्टार्ट्स रबिंग हिज ऑल बॉडी पार्ट्स बाय हिज पाम वेरी जेंटली ऑल ओवर द बॉडी। सारा क्षीण नष्ट हो जाता है, क्षीण सारा जो गलित कात्रस अनुभूति है नष्ट होती है, स्नायु में शक्ति प्राप्त हो जाती है, सारे फ्रैक्चर जुड़ जाते हैं, और पुनः उत्साह और शक्ति प्राप्त हो गई होती है उसको। तो उसको बड़ा पश्चाताप होता है कि मैं ये मणि कोई ले रहा है, बालक को कोई ईजा तकलीफ पहुंचा रहा है, इससे मैंने क्रोध किया, और भगवान के साथ में इतना घनघोर युद्ध किया, 28 दिन तक 28 रात तक मैंने टाइम वेस्ट किया मेरा, अगर पहले ही इनको पहचान लिया होता तो ये सब इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्या होता है ना, जब हम लोग इंद्रियों की भावना में वश रहते ना, तो बहुत समय बर्बाद होता है। आप सोच लीजिए इसके बारे में, हमें आज के तारीख में अगर भगवान को मिलना है तो बाधा क्या है बताओ? केवल हमारे इंद्रियों की जो भावना है, भोग की भावना, वही सब टाइम वेस्ट कर रही है हमारा। तो भगवान आज भी रेडी है आपको मिलने के लिए, और हम भी पोटेंशियली आज उनको मिल सकते हैं, लेकिन नहीं मिल रहे हैं वो, क्योंकि हमारी जो अटैचमेंट है, आसक्तियां हैं, हमारा जो क्रोध लोभ मद मद मत्सर का विकार जो है, ये हमारी बाधाएं हैं, अवरोध है हमारा, और उसकी वजह से बहुत समय बर्बाद होता है हमारे जीवन का। उसके एंड में जैसे इसके 28 दिन बर्बाद हो गए, इतना भक्ति प्रभु रामचंद्र का करने के बाद भी 28 दिन वेस्ट करने के बाद अनुभूति हुई, अरे 28 दिन के पहले जो व्यक्ति था वही आज है भगवान, वो मेरे सामने खड़े, लेकिन 28 दिन तो वेस्ट हो गए ना उसके, फिर शरणागत हो गए, सोचिए बहुत पश्चाताप हो गया उसके बाद में, बोले मैंने मेरे भगवान के ऊपर आक्रमण किया, उनको मुक्का प्रहार किया, उन पर शस्त्र चलाया, उनको युद्ध में हराने का और मारने का प्रयास किया मैंने, कितना बड़ा पापी हूं मैं, अभी क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका कैसा पश्चाताप करना चाहिए। तो अंदर जाते बोलते एक ही उपाय है, मणि तो दूंगा ही उनको मैं, लेकिन मेरी कन्या भी दूंगा। तो अंदर से कन्या को जाम्बवती को ले आती है और कहते हैं जाम्बवती भी बचपन से, एक विशेष बात है इन सब कन्याओं के बीच में, बचपन से ये सब कृष्ण का चिंतन कर रही है, बचपन से दे ऑलरेडी बिकम प्योर डिवोटीज राइट फ्रॉम चाइल्डहुड बाय कॉन्स्टेंट मेडिटेशन ऑन कृष्णा एज सर्वेंट ऑफ सर्वेंट नॉट एज क्वीन। तो जब पहली बार उसको श्री कृष्ण का दर्शन होता है तो कहते वो बेहोश हो जाते हैं वहां पर, बड़े प्रयास से जाम्बुवान उसको होश में लाते हैं, और श्री कृष्ण भगवान उसको लेकर मणि को लेकर गुफा के बाहर आते हैं। गुफा के बारे में क्या सीन है, 13 दिन तक वो इंतजार करते हैं, बाद में उनको डर लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया है अंदर, कुछ अभद्र हो गया है, तो उनको भी जीवन की चिंता रहती है, वो भाग जाते हैं वहां से। भगवान आते आराम से रथ में बैठते हैं और जाम्बवती पत्नी समंतक मणि लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर द्वारका में बहुत हलचल मच जाती है, देखो ऑलरेडी रुक्मिणी का विवाह हो चुका है, तो रुक्मिणी और बाकी जो वसुदेव देवकी जैसे बड़े रिश्तेदार भगवान के हैं, उद्धव जी हैं, सब मिलकर बहुत दुखी हो जाते हैं, और सब लोग सत्राजित को गाली देते हैं कि इसकी वजह से, इसकी अफवाह फैलाने की वजह से भगवान द्वारका छोड़कर चले गए और देखो अभी वापस नहीं आ रहे हैं, मतलब क्या उनका हो गया पता नहीं, लोग भी लौट कर आ गए, उनको भी कोसते हैं कि तुम कैसे लौट के आए, तो बहुत भयंकर घटना हो गई शायद इसलिए हम लोग डर के मारे लौट के आए, मतलब क्या हमने भगवान को खो दिया क्या, वी हैव लॉस्ट कृष्णा। वो सब लोग सत्राजित को गाली देते हैं, उतने में भगवान जाम्बवती को लेकर लौट के आते हैं, और भगवान जो है वो मणि जो है सत्राजित को लौटा देते हैं, सबके सामने बुलाते हैं उनको सभा में, तो ये लो मणि, ना मैंने तुम्हारे भाई का वध किया है, ना मणि को चुराया है, ये लो ऐसे ऐसे घटना हुई थी, ये मणि लो, और जाम्बवती को अपने घर पे ले जाते हैं। सत्राजी को बड़ा पश्चाताप होता है कि मैंने इतनी अफवाहें फैलाई, इतना द्वेष के मारे मैंने इतना गलत काम किया, और भगवान ने पूरा सत्य खोल कर सबके सामने प्रस्तुत किया और मैं शर्मिंदा हो गया, अभी बड़ा दुख होता है उसको। और सत्यभामा इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि देखो ना, सुंदर लड़के के पिताजी को बड़ा गर्व होता है, कह रही मेरी लड़की बहुत सुंदर है। तो जितने भी राजपुत्र आए उसको आपकी कन्या मुझे विवाह में दे दो, मतलब ना मांगनी, क्या बोलते हैं उसको, मांगते हैं ना कि हाथ मांगते हैं ना उसका, ऐसे कई योग्य राजपुत्र आकर उन्होंने उनका मंगनी किया था कि हमको चाहिए आपकी कन्या, और उन्होंने ना सबको हाँ बोला था, इमेजिन ना बोलने को नहीं हो रहा कि मैंने उसको भी हाँ बोला है, ऐसे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, और सामने वाले को ना बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, इसलिए उसको उसने बहुत लोगों को हाँ बोल के रखा था। ओवरनाइट वो अपना विचार बदली कर देता है, कई लोगों को ऑलरेडी पता है दिया कि आपके साथ में मेरी कन्या का विवाह करूंगा, और आज वो इतने पश्चाताप में है, बोले कि मणि तो भगवान को दूंगा ही मैं, लेकिन मेरे सत्यभामा को भी भगवान को पत्नी के रूप में दूंगा। तो फिर वो अपनी कन्या को लेकर, मणि लेकर भगवान के सामने आता है और पश्चाताप करता है, माफी मांगता है, कहता है मेरी कन्या आप पत्नी के रूप में स्वीकार करो और समंतक मणि भी ले लो। देखिए भगवान समंतक मणि को लेते नहीं वापस, क्यों पता है, क्योंकि दिल से वो समंतक मणि भगवान को देना नहीं चाहता है, उसके मन में अभी भी समंतक मणि के रूप में आसक्ति है, पश्चाताप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन समंतक मणि के प्रति आसक्ति नष्ट नहीं हो रही है, इसलिए ही इज रिलक्टेंटली गिविंग इट टू कृष्णा पैच ऑफ द सिचुएशन। श्री कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी है, बोलते हैं रख लो, रख लो अपने पास रख लो, कीप इट विद योरसेल्फ, और सत्यभामा को स्वीकार कर लेते हैं।
तो वापस अपने घर पर रखता है उसको।
तो इसमें जाम्बुवती और सत्यभामा ऑलरेडी द्वारका में आ चुके हैं, लेकिन गोपाल चौबे में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान हमेशा दो दूतों को जहां पर भी वो है वहां से ब्रज भेजते हैं, और ब्रज के लोग दो दूतों को ब्रज से जहां पर भगवान है वहां भेजते हैं, और ये दूत आगे पीछे चलते रहते हैं, और वहां की क्या घटनाएं, कंस्टेंटली दे आर रिपोर्टिंग टू नंद यशोदा। गोपाल चंबू का विषय ये है। गोपाल चंबू में क्या है, स्निग्धकांत और मधुकांत ये दो प्रमुख दूत हैं भगवान के, और वो कब भगवान के पास में है, कभी इनके पास में है, कभी भगवान के पास में इनके पास में, और सारी कथाओं का जो हो रहा है भगवान के साथ, मथुरा में क्या हुआ, द्वारका में क्या हुआ, इत्यंभूत उसका वर्णन जो है वो नंद यशोदा को दे रहे हैं। और नंद यशोदा भी यहाँ से मैसेज भेज रहे हैं, कुछ उनका ओपिनियन भेज रहे हैं, उनका को कुछ कहना है वो उनको बता रहे हैं ब्रज में बैठकर, रैप्ड अटेंशन। उनका श्रवण ऐसा है कि जब भगवान की कथा में किसी और का वर्णन आ जाता है तो वो कहते हैं उसको बस करो, कृष्ण के बारे में बताओ। इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। जब हम पढ़ते हैं गोपाल चंपू को तो आपको समझ में आएगा कि जब भी अभी हम आपको बता रहे ना, संबंधक मणि कौन था, इस तरह छत्राजित कौन था, फिर वो जंगल में गए, फिर युद्ध हुआ, तो ये सब उनको सुनना नहीं है, उनको केवल कृष्ण कृष्ण और कृष्ण के बारे में सुनना है। तो उनका विवाह नहीं होता है, तो ये खबर करते हैं कि उनका विवाह अब तक हुआ नहीं है। तो यशोदा माता जी पूछती है कि क्यों नहीं हुआ विवाह तब तक, तो जवाब मिलता है कि क्योंकि आपने और नंद महाराज ने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है, वसुदेव जी वेट कर रहे हैं आप लोगों का। बोला अच्छा, हमारे लिए उनका विवाह रुक रहा है, और ये भी जानते हैं कि आगे जाकर कृष्णा भी राज द्वारकाधीश बने ना वो, तो कई जगह जाएंगे, वहां वहां उनके विवाह होते रहेंगे, कई कन्या उनको वर लेंगे और वो स्वीकार करेंगे, उनका भी धर्म है राज के रूप में, राजा के रूप में, तो कई विवाह होंगे। तो कहते हैं कि ये एक काम करो, हम लोग उनको एक ब्लैंकेट अप्रूवल दे देते हैं, और वो लेटर जो है वो उद्धव जी के नाम लिखना, उद्धव जी बड़े यहाँ पर आके गए ना, वी नो हिम वेरी नाइसली, उद्धव जी को लिख के देना वो लेटर, और उसमें लिखना कि ये विवाह और आगे वाले जितने भी विवाह होने वाले हैं सबके लिए हमारी सम्मति है, विवाह रोकना नहीं इनका। तो फिर वो लेटर जब पहुँचता है तो कहते हैं बड़ी धूमधाम से द्वारका में सत्यभामा का और जाम्बवती का भगवान के साथ विवाह होता है। कितने विवाह हो गए, तीन विवाह हो गए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद में भगवान हस्तिनापुर जाते हैं। ये भी कहानी बड़ी रोचक है भगवान की, क्योंकि उस समय ये अफवाह फैल गई है कि पांडव कुंती के साथ में लाक्षागृह में जलकर खत्म हो गए, कौरवों ने षड्यंत्र बनाया, उनको जलाकर खाक कर दिया, सब लोग दुखी है, भीष्मदेव विदुर बड़े बड़े जो अच्छे भक्त थे भगवान के, सब दुखी हैं, बाकी कुछ लोग खुश हैं, लेकिन दुखी लोग तो उनके सगे संबंधी ना। तो भगवान जाते हैं निकल के, नया नया विवाह हो गया है, तीन पत्नियां अभी घर पर हैं, और कृष्ण बलराम हस्तिनापुर जाते हैं और सबके सांत्वना करते हैं, भीष्मदेव से मिलते हैं, विदुर से मिलते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, और वहां पर सांत्वना हो रही है, अच्छी तरह से मिलाप हो रहा है उनका। ऐसे कहते हैं कि भगवान देखो कैसे है, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान को पता है कि पांडव जीवित है, लेकिन फिर भगवान डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, और वो एज इफ वो मर गए हैं इस तरह से भीष्मदेव का सांत्वन कर रहे हैं। ये भी एक शिष्टाचार है, हाँ, क्योंकि हर सत्य को किसी भी समय प्रकट नहीं करना चाहिए, योग्य समय पर आपको पता भी है फिर भी संयम के साथ में उस सत्य को आपको दबा कर रखना है और योग्य समय पर उसको प्रकट करना है। यू कैनॉट बिकम हाँ बिकॉज ऑफ अर्ज ऑफ स्पीच, हाँ वाचो वेग की वजह से आपको अभी बोलना है, मुझे पता चल गया है कोई इंपॉर्टेंट बात, मुझे 10 लोगों को बताए बिना सांत्वना नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान जानते हैं कि सभी समय पर इसको प्रकट करेंगे तो उसका एक प्रभाव होगा, इसलिए जानते हुए भी दुखी भीष्म को सांत्वना दे रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली पांडव गुजरे नहीं है फिर भी भीष्मदेव दुखी है कि समझ के गुजरे हैं, तो दुख उनका सत्य है ना, वो जो दुख उनको हो रहा है वो तो इल्यूजन नहीं है, वो तो वास्तव है, और उस दुख की सांत्वना देना जरूरी है, इस सांत्वन दे रहे हैं। यहां पर क्या होता है कि सब लोग सत्राजित पर बहुत गुस्सा करते हैं, तीन प्रकार के लोग उसमें होते हैं, एक है अक्रूर, दूसरे है कृतवर्मा, और तीसरा है ग्रुप ऑफ पीपल है, कौन है मालूम है, जिन लोगों को सत्राजित ने वादा किया था कि मेरी बेटी का विवाह तुमसे करूंगा। उनका तो क्रोध तो एकदम समझ सकते हैं हम लोग, कारण क्या है उसका। अक्रूर का क्या काम है, ऐसा कहते हैं कि अक्रूर जी ने कृष्ण को ब्रज में से बलराम जी के साथ में ले गए थे, वो
तब गोपियों ने उनको श्राप दिया था कि तू बहुत क्रूर व्यक्ति है, हमारा नाम अक्रूर क्यों है, तुम क्रूर हो, तुम्हारे दिल के टुकड़ों को छीन के लेके जा रहे हो, हमारे जीवन को उध्वस्त करके जा रहे हो। वो तो अपनी सेवा कर रहे हैं, फिर भी गोपियों की तरफ से उनको श्राप लगा था। उस श्राप की वजह से इस षड्यंत्र में वो भी घुस गए, प्रभाव की वजह से। कृतवर्मा क्यों घुस गए? क्योंकि कृतवर्मा ने बहुत देर तक कंस का संग किया था, कंस के दरबार में उसकी सेवा की थी, इसलिए उसकी मति भी उस प्रभाव से भ्रष्ट हो गई थी। इसलिए हमको समझना चाहिए कि आप अगर बहुत प्रामाणिक कर्मचारी हो, प्रामाणिक एम्प्लॉई हो, प्रामाणिक सेवा कर रहे हो, लेकिन अगर आप किसी भ्रष्ट कंपनी में काम कर रहे हो, तुम दारू की कंपनी में काम कर रहे हो, या किसी गलत बिजनेस के अंदर आप नौकरी कर रहे हो, एबॉर्शन के हॉस्पिटल में नौकरी कर रहे हो, आप बहुत प्रामाणिक कर्मचारी हो, लेकिन क्योंकि आप गलत संस्था में, गलत राज्य में, गलत लोगों के संघ में काम कर रहे हैं, गलत काम में सहायता कर रहे हैं, उसका कार्मिक परिणाम आपके ऊपर होगा ही होगा। और वो कहाँ होता है? अपनी मति पर होता है, अपनी मति भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए कंस के अखाड़े में कुछ औरतें बोली कि ये तो अन्याय हो रहा है, इतने भयंकर योद्धाओं को भगवान के सामने खड़ा किया जा रहा है और भगवान तो बालक है, छोटे छोटे, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट जस्टिस, उनके इक्वल लोगों को उनके साथ में युद्ध करना चाहिए। तो पहाड़ जैसे महान योद्धा जो है उसको देखकर भी डर लगता है, ये बालकों के सामने फेंक रहे, उनको भेज रहे, मारो इनको करके। तो हमें इस सभा को छोड़ के जाना चाहिए जिसमें अन्याय हो रहा है, क्योंकि अगर हम इस अन्याय को देखते रहेंगे तो अन्याय का परिणाम हमारे ऊपर भी होगा कि हम लोग देख रहे हैं मुक्त तरीके से, तो हम लोग तो उसको टाल नहीं सकते हैं, कंस को कन्विंस करके वो कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो हम इतना जरूर कर सकते हैं कि यहां से हम खुद निकल जाएं। ये कॉन्शियसनेस है। गलत काम जहां पर हो रहा है अगर आपकी सम्मति नहीं है और आपके बल में नहीं है कि उसको हम कैंसिल कर दे, रद्द कर दे, तो कम से कम हमको वहां से निकल जाना चाहिए। उस घटना का पार्टिसिपेंट होकर देखते रहना नहीं चाहिए वहां पर, जो किसी पर बलात्कार हो रहा है, किसी को चोरी हो जा रही है, किसी लूटा जा रहा है, आप इतने बलवान नहीं हो कि आप उनको मार सकते हो, कम से कम आपको वहां से निकल जाना चाहिए अगर आप कमजोर हो तो। लेकिन वहीं बैठकर, वहीं देखना, वहीं पर खड़े रहना, उसी में भाग लेना, उसी का दर्शन करते रहना, ये हमारे लिए पाप का भागीदार बना देता है। इसलिए उन मथुरा की औरतों ने कहा था कि हमें यहां पर एक क्षण भी खड़ा नहीं होना चाहिए, तुरंत जाना चाहिए निकल के। इसी के वजह से कृतवर्मा, क्योंकि कंस के दुष्ट राज्य में उसने कई बार, कई सालों तक सहयोग दिया था, इसलिए उसकी मति भी भ्रष्ट थी। उन्होंने सब लोग मिलकर मालूम है क्या कहा? सत्यराजित को मारना चाहिए और मणि को चुरा लेना चाहिए। और बाकी तो लोगों का तो जाहिर बात था कि उनको सत्यभामा नहीं मिली तो वो बहुत द्वेष में थे। सब लोगों ने प्लॉट किया, होता है किया कि सत्यराजित को मार देना चाहिए। और शतधन्वा नाम का एक व्यक्ति था, जो एक व्यक्ति था जिसके लिए प्रॉमिस किया गया था कि सत्यभामा का विवाह उसके साथ होगा, उसने तय किया कि मैं मारूंगा रात के समय पर। जब सोए हुए सत्यराजित को रात को वो मार देता है और वो मणि लेकर चला जाता है। सारी रानियां आक्रोश करती है सत्यराजित की, रो रो कर आक्रोश करती है। सत्यभामा को पता चलता है, वो भी रोती है बहुत जोर से कि मेरे पिताजी को किस तरह से क्रूरता से मारा गया। तो शतधन्वा जो है वो उसको रात को मारकर, सर काट कर उसका जो मणि है वो लेकर अक्रूर जी को देते हैं। और सत्यभामा क्या करती है, वो शतरानी है, वो शी इज वेरी पावरफुल लेडी, वो क्या करती है, वो अपने पिता के शरीर को दाह संस्कार करने देती नहीं है, वो उसको प्रिजर्वेटिव ऑयल टैंक में रखती है शरीर को बनाए रखने के लिए, और रथ लेकर चले जाती है सीधे हस्तिनापुर। आई विल टेल माई हस्बैंड एंड ब्रिंग हिम बैक टू टेक रिवेंज, वीरता है उसके अंदर। अकेले चले जाते हैं हस्तिनापुर, और फिर जब वो पता चलता है शतधन्वा को कि सत्यभामा कृष्ण को मिलने के लिए द्वारका गई है, तो डर जाता है। आकर मणि जो है वो अक्रूर को सौंपता है, बोलता है अक्रूर जी संभालिए इसको, मैं तो जा रहा हूं। और वो भाग जाता है वहां से, और भगवान तुरंत लौट कर आते हैं रथ में बैठकर। ऐसे एक सामान्य पति होते हैं ना, वो अपने पत्नी के दुख को देखकर खुद भी दुख को व्यक्त करता है ना, टू सिंपथाइज। तो भगवान भी रो रो कर अपने पत्नी को सांत्वना देते हैं, अरे कितना बुरा हुआ, तेरे पिताजी का मृत्यु हो गया, वगैरह वगैरह। और ये ऐसे करते करते उसको द्वारका में लेके आते। द्वारका में आते ही अक्रूर जी, कृतवर्मा भी गायब हो जाते हैं, अक्रूर जी वो मणि को लेकर गायब हो जाते हैं। फिर भगवान जो है रथ में बैठकर, अभी ये शतधन्वा जो है ना वो ऐसा घोड़ा लेता है, तेज घोड़े लेता है एकदम, और रातों रात कहते हैं कि हजारों मील यात्रा करता है वो उत्तर की दिशा में। एक रात में वो द्वारका से मिथिला तक पहुंच जाता है। तो भगवान उसके पीछे
कृष्ण बलराम रथ लेकर पहुंच जाते हैं और आगे जाकर उसके घोड़े घोड़े जो हैं सत धनवा के वो बेहोश हो जाते हैं, उतना सफर नहीं कर पाते, तो रथ छोड़कर भागने लगता है। तो भगवान भी इक्वल होने के लिए अपना रथ छोड़कर पैदल भागने लगते हैं और भागते हुए सत धनवा का चक्र से सर काट देते हैं। जाके ढूंढते तो उसके वस्त्र में कोई मणि नहीं मिलता है, तो बलराम जी को कहते हैं अरे मैंने तो इसको बेकार मार दिया, मणि तो इसके पास नहीं है। तब तक तो वो मिथिला नगरी के पास पहुंच गए हैं और मिथिला नगरी के राजा और बलराम जी का मित्रता है, तो बलराम जी कहते हैं मैं इतना दूर आया हूँ तो मैं मिथिला नगरी में जाकर थोड़ा सा समय बिताता हूँ, आप चले जाओ वापस। तो उसी समय बलराम जी ने उस 4 महीने के निवास में उनका आदरातिथ्य स्वीकार किया है और बड़ी धूर्त तरीके से दुर्योधन वहाँ पहुँचता है और वहाँ से बलराम जी से गदा की कला सीखता है। भगवान लौट के आते हैं, तब तक यहाँ पर हाहाकार द्वारका में, क्या हो रहा है द्वारका में, तो लोगों को भय लगता है क्योंकि ऐसा एक कथा है अक्रूर के बारे में। अक्रूर के पिताजी का नाम है स्वफालक। हाँ, तो एक राजा थे काशी में और काशी में अकाल पड़ गया था, तो संतों ने कुछ गणित वणित करके एस्ट्रोलॉजी का राजा को समझाया कि तुम अगर स्वफालका के साथ में अपनी कन्या का विवाह करोगे ना, तो स्वफालका के चरित्र में इतना पवित्रता है कि वो जहाँ पर भी रहता है वहाँ पर वर्षा आती है, अच्छी तरह से अकाल नहीं पड़ता है। तो बड़ी योजनापूर्वक अपनी कन्या का विवाह स्वफालक के साथ में करता है और जैसे ही विवाह होता है काशी में वर्षा होती है, अकाल नष्ट हो जाता है और फिर उसका पुत्र अक्रूर है। तो यह ऐसी वदंता हो जाती है सब जगह वदंती कि अक्रूर भी उसी तरह के पावरफुल व्यक्ति, जहाँ पर अक्रूर रहेंगे वहाँ पर दुष्काल अकाल नहीं होगा, पेस्टिलेंस यानी कि जो भी महामारी वगैरह नहीं होगी और सब कुछ सुकून जो है बना रहेगा। तो कुछ लोग ऐसे अपने वहम में द्वारका में वो अपशकुन का दर्शन करने लगते हैं, तो बोलते हैं अक्रूर जी कहाँ हैं, सब लोग पूछते हैं कॉमन सेंस अक्रूर कहाँ हैं, तो अक्रूर नहीं है द्वारका में। तो वो सोच लेते कि अक्रूर जी मणि को लेकर कहीं चले गए हैं, इसलिए द्वारका में ऐसे ऐसे नजर आ रहा है। लेकिन आचार्य बताते हैं ये भी उनकी मूर्खता का प्रमाण है, क्योंकि जहां पर स्वयं कृष्ण विराजमान है द्वारकाधीश रूप में वहां पर अकाल कैसे हो सकता है, कौन सी अशुभता आ सकती है, किनके केवल स्मरण मात्र से भी सब अकाल ऐसी चीज दूर चली जाती है, सब अशुभ चीजें नष्ट हो जाती है जिनके स्मरण मात्र से, जिन वो स्वयं वहां पर शरीर से उपलब्ध है, तो कैसे हो सकता है ये। फिर भी वहम तो वहम ही होता है, याद रखना। जैसे हमारे भक्तों के बीच में कैसे अभी वास्तु का रोग, वास्तु है ना, वास्तु फेंग शुई और वास्तु का एक वेग सब पर छा गया है। सब लोग जब करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, सब लोग कृष्ण को भगवान के रूप में मानते हैं, लेकिन फिर भी वास्तु अपनी जगह बनाए रखा हुआ है भक्तों के हृदय में। क्या करेंगे, वी हैव टू काउंसिल, वी हैव टू हेल्प, बट फिर भी सत्य तो सत्य है। वो बहुत ज़्यादा उसको सोचते हैं कि ये दरवाज़ा किधर होना चाहिए और ये यहाँ पर मेटल का होना चाहिए और पानी का होना चाहिए और ये होना चाहिए, इसकी वजह से मेरी माँ बीमार पड़ रही है, उसकी वजह से मेरे बच्चा बीमार पड़ रहा है। ये सत्य है, व्हाट टू डू, दिस इज अ फैक्ट। मैं केवल एक प्रश्न पूछता हूँ, जब मैं बच्चा था बचपन में तब ये वास्तु कहाँ था, आज कहाँ से पैदा हो गए। ये एक बिजनेस वेंचर है सब लोगों का। गुरु महाराज कहते हैं कि सत्य उसमें है, तथ्य उसके अंदर है, लेकिन हर तथ्य को सबसे ज़्यादा महत्व हमको देना नहीं है। हर एक तथ्य को, तथ्य बहुत सारे होते हैं, लेकिन तथ्य को कौन सी जगह देनी है अपने जीवन में, ये हमारे हाथ में होता है। प्राधान्य क्रम, प्रायोरिटी किसको देना है वो हमारे हाथ में है, उसको निग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना लेना है, उसके बाद में जो होता है भगवान की दया मानकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। उस वस्तु को इतनी प्रधानता नहीं देना है कि जिसकी वजह से हमारा पूरा जीवन वास्तुमय हो जाए, कृष्णमय होने के बदले वास्तुमय हो जाए, सारा कॉन्शियसनेस। मतलब अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो बहुत धनी होते हैं, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो घर में फुल टाइम रखते हैं एस्ट्रोलॉजर, और किस समय पर कितने घंटे के कितने मिनट के बाद में घर के बाहर निकलना है वो भी उससे पूछते हैं, किस दिशा में देखते हुए बाहर निकलना है वो भी पूछते हैं, फिर कितने समय पर कितने मिनट पर ऑफिस के गेट में प्रवेश करना है ये भी पूछते हैं, जल्दी पहुंच कर बाहर रुक जाते हैं, घड़ी को देखते रहते हैं, 8:45 और 3 सेकंड के बाद में भी ऑफिस में प्रवेश करना है, वो भी उत्तर दिशा से प्रवेश करना है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, हर रोज अपना हर काम ऐसे करते हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजी हैज बिकम सो मच प्रोमिनेंट इन देयर लाइफ कि उनको उसके बिना कुछ चलता नहीं। उनका भोजन का पहला ग्रास कितने मिनट में खाना है वो भी उनको बताते हैं ज्योतिषी।
तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि भगवत भावना को अपनाने के समय भी इस प्रकार की परीक्षाएं हमारे जीवन में चलती रहती है, लेकिन हमारा क्या कुशलता होना चाहिए कि हर स्थिति में बाकी सारे तथ्यों को तथ्य मानते हुए उनको अपनी अपनी जगह पर रखना है और भगवान को टॉप पोजीशन में रखना है और उनको वहां से सेकंड थर्ड पोजीशन देना नहीं है। तो यहाँ पर द्वारका वासियों की जो भगवान को भगवान मानते हैं फिर भी उनके मन में वह आ रहा है कि वो अक्रू चला गया ना इसलिए ऐसा हो गया, ये भगवान अक्रू को बुलाओ भेजते हैं। भगवान भी ये सत्य है कि लोगों को मन में वहम है, ये मेरे भक्त हैं फिर भी ये वहम से आप ही प्रभावित हो गए हैं, इसलिए वो उसका भी इलाज करते हैं, अक्रू को बुलाते हैं, बोलते हैं पूरे द्वारका में यहाँ पर ये अफवाह फैल गई है कि तुम नहीं हो इसलिए ऐसा ऐसा हो रहा है, लौट के आ जाओ और वो मणि जो है वो राजा अग्रसेन को दे दो। और उग्रसेन उनका अक्रू उनके भक्त हैं तो बड़े प्रेम से बड़े डिप्लोमेटिकली उनको समझाते हैं कि देखो वैसे भी ये बड़ो प्रॉब्लम का ही कारण है, वो सत्याजय सोच रहा था कि मणि बहुत शुभ है वो मेरे पास में होना चाहिए, देखो मणि उसके पास में होते ही उसका वध हुआ कि नहीं, मणि उसके पास में होते ही प्रसेन का वध हुआ कि नहीं। भगवान बड़े समझाते उसको कि जिस वस्तु को तुम बड़े ऑस्पिशियस समझते हो, जिसके बिना जीना मुश्किल समझते हो, जो बहुत महत्वपूर्ण समझ सकते हो, जिससे वेल्थ आती है जिससे शुभता आती है उसी की वजह से कई मृत्यु हो गई है, कई प्रकार के यहाँ पर गलत फहमियाँ फैल गई है, कई प्रकार की अप्रिय घटनाएं हो गई है, तो ये मणि को छोड़ दो आप, ये वैसे भी राजा की प्रॉपर्टी है राजा संभाल लेंगे उसको। तो अक्रूर फिर बाद में समझ बूझ कर उसकी मति भगवान बड़े ही कुशलता से मति को साफ कर देते हैं, सनमति बना देते हैं उसको और लौटा देते हैं उसको। तो सुखदेव जी इस अध्याय के अंत में हमको समझाते हैं कि समंतक मणि की कथा इतनी सुंदर कथा है, जो उसको बड़े ध्यान से पढ़ता है और सुनता है उसके जीवन में जो भी अपकृति है वो नष्ट हो जाती है। डेफेमेशन, अगर आपका डेफेमेशन हो रहा है किधर, आपकी अपकृति हो रही है, कोई आपका बदनामी हो रही है कहीं, तो ज़रूर आप बड़े ध्यान से प्रेम से समंतक मणि की कथा सुनिए, कथा पढ़िए, जिसके वजह से आपके जीवन में अभी जो बदनामी हो रही है वो सब नष्ट हो जाएगी। और साथ साथ में क्योंकि श्री कृष्ण का बार बार चिंतन इसमें हो रहा है आपको भक्ति भी प्राप्त होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हमारे पास समय है कि समाप्त हो गया है? यहाँ पर कौन है इंचार्ज? बाकी और 5 रानियों का विवाह बाकी है, वो अभी करें कि रात को करें, यही प्रश्न है। व्हाट शुड वी डू? ओके आई विल टेल वन, एक कथा के अगर समाप्त करते हैं तो इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में पांडव प्रकट हो जाते हैं, द्रौपदी के स्वयंवर में प्रकट हो जाते हैं, द्रौपदी को प्राप्त करते हैं, तब सब विश्व को पता चलता है कि पांडव जीवित हैं। तो फिर दोबारा भगवान जो है उनको मिलने के लिए हस्तिनापुर जाते हैं और उनको मिलके फिर बहुत सुंदर वर्णन है जो भागवत का बहुत सुंदर वर्णन उसके अंदर है कि कैसे, जैसे उस समय पहले बार जब गए थे सांत्वना करने के लिए तो अनाउंस करके गए थे, इस बार जब गए तो ऐसे सरप्राइज विजिट दिया उन्होंने, किसी को पता नहीं था कि भगवान आ रहे हैं। और अभी देखो इतनी दुख भरी घटना से लौट कर आए थे ना, वो द्रौपदी को तो प्राप्त किया था उन्होंने, बड़ी आनंद की घटना थी, लेकिन लाक्षागृह में गए, वहाँ पर जलाने का प्रयास किया गया, फिर कुछ दिन छुपना पड़ा, उनको भिक्षा मांग के रहना पड़ा, फिर ऐसे ही गुप्त रूप में। इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर पीपल हु आर ग्रेट, यू नो, महान लोगों के लिए ऐसा जीवन बहुत कष्टमय है, तो थोड़ा सा मीडियम मूड में थे वो लोग। लेकिन ऐसे कहा कि जैसे भगवान पहुंचे द्वारका में तो जैसे मुर्दा में दोबारा आत्मा प्रवेश करती है और मुर्दा जीवित हो जाता है, वैसे अनुभव पांडवों ने किया। और भगवान ने तो सबको गले लगाया, लेकिन उसके पहले उन्होंने कुंती देवी को प्रणाम किया, युधिष्ठिर भीमसेन को प्रणाम किया, अर्जुन को गले लगाया और नकुल सहदेव ने उनको प्रणाम किया। और भगवान ने ऐसे कहा कि जैसे ही भगवान का दर्शन उन्होंने किया उनकी सारी चिंताएं नष्ट हो गई, उनका सारा होता है मोरोजनेस, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं वो, चिंतित होता है ना स्वभाव, सब नष्ट हो गया वो, क्या बोला आपने, निराशापूर्ण जो उनका भाव था वो सब नष्ट हो गया, ऑल नेगेटिव सेंटिमेंट्स वर फिनिश्ड, आनंद उत्साह जोश ये सब उनके हृदय प्रकट हो गया, ऐसे मानो जीवन प्राप्त हो गया उनको। और बड़े प्रेम से बार बार भगवान ने उनको गले लगाया और आनंद प्रकट किया कि आप लोग
इतने संकट से लौट के आए। तो भगवान ने कहा ये आप, उन्होंने कहा कि आपकी ही कृपा है, क्योंकि तो आपने ही वहाँ पर विदुर जी को भेजा था, विदुर जी ने फिर सॉरी आपकी वजह से, संदेश की वजह से वहाँ पर दूत गया था और गुप्त रूप में हमको मिला था, उन्होंने आपका जो योजना है हमको बताया था। हम जानते हैं कि बिना आपके होते हुए हम बच नहीं सकते थे, इसलिए आपका बार बार धन्यवाद है कि आपने हमको इस भयंकर संकट से बचाया है। और आपकी कुंती भी बता रही है हमारा भगवान को कि आप ही के वजह से मैं जानती हूँ कि इतने सारे संकट मेरे जीवन में आए, केवल आपके होने से हम लोग हर संकट से सही सलामत निकल रहे हैं बाहर, इसलिए आपका बारंबार धन्यवाद है। तो कहते हैं कि अभी हमारे पास ही रुको, आप इतने दिन के बाद आप आए हो, इतने दिन हम लोग भी दूर थे, इतने कठिन प्रसंग से गुजरे, पर चतुर्मास से शुरू हो रहा है, आप यही निवास करो 4 महीने के लिए। प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान को चतुर्मास का करने को जरूरत नहीं है, चतुर्मास से हम लोग करते हैं, लेकिन भगवान अपने प्रेम के वश इस प्रपोजल को एग्री करते हैं कि हाँ चतुर्मास से है, मुझे भी कहीं यात्रा नहीं करनी चाहिए, मैं रह जाऊंगा आपके साथ, और बहुत आराम से उनके साथ में रहते हैं। तो एक दिन अपने मित्र अर्जुन के साथ में वो शिकार खेलने जाते हैं। तो जैसे अभी आप लोग रह रहे हो, उसमें कहीं घूमने भी यहाँ पर घूमने आए, तो हम तालाब में भी स्नान करने जाएंगे, वॉक में भी जाएंगे, नदी किनारे में जाएंगे, वहाँ पर भी जाएंगे, गाय के पास भी जाएंगे, आपके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, लड्डू खाएंगे, वहाँ प्रसाद खाएंगे, आप मुझे माला देंगे, प्रसाद देंगे, वो खाते रहेंगे। वो यहाँ के निवास का एक आनंद है ना, वो जब यहाँ पर हुई तो ये सब चीज़ें अपने आप होती रहेंगी। उस तरह से शिकार खेलना क्षत्रियों का ऐसा एक आनंदमयी क्रीड़ा है, और जंगल में जब संत लोग रहते हैं तो जंगल में शांति रखना ये भी क्षत्रियों का कर्तव्य होता है। ऐसा नहीं कि बेफजूल किसी भी जानवर को मार दो, जरूरी है जो आतंक मचा रहे हैं उनको मारना है, बाकी लोगों को सुरक्षित रखना है, और जो आतंकवादी जानवर है उनको मारना है, और साथ साथ में अपना जो युद्ध कौशल है उसको भी बनाए रखना है, उसको भी पॉलिश रखना है। और भगवान ने, प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान जानते थे कि आगे जाके बड़ा युद्ध होने वाला है, तो अर्जुन को अपने शस्त्र अस्त्र जो है वो धार धार बनाकर रखना चाहिए, अपना कौशल भी एकदम तत्पर रखना चाहिए। इसलिए अर्जुन के साथ भगवान स्वयं रथ में बैठकर जंगल में गए और बहुत प्रकार के बहुत जानवरों का अर्जुन ने वध किया, और फिर वो थक गए और अर्जुन को प्यास लगी, तो उसके बाद लौट के आए। ऐसे कहा गया कि जो जानवर यज्ञ के योग्य थे उसको भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के पास यज्ञ के लिए भेज दिए, और बाकी सब छोड़कर वहाँ पर वापस लौट के आए। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मुझे विश्वकर्मा की आवश्यकता है, आप मेरे लिए एक शहर बना दो अच्छा सुंदर। तो विश्वकर्मा जी आए, उन्होंने बहुत कम समय में बहुत सुंदर शहर बना दिया। फिर भगवान दोबारा निकले अर्जुन को लेकर, ये तो अलग प्रसंग है, दोबारा भगवान अर्जुन को लेकर निकले रथ में बैठकर, खांडव वन में गए वो, और अग्निदेव का भगवान के ऊपर, भगवान के लिए उन्होंने कुछ सेवा किया था, पांच जन्य जो है ना शंख वो भगवान को अग्नि ने दिया था, तो उसके लिए अर्जुन भगवान ने सोचा कि अग्नि की भी कुछ सेवा की जाए। अग्नि को बहुत भूख लग रही थी, अग्नि को जड़ी बूटी खाने की बहुत इच्छा थी, इसलिए भगवान ने खांडव वन को जला दिया और पूरे अग्नि को भक्ष कर दिया, मतलब स्वाहा कर दिया। उसके बाद में भगवान को प्यास लगी और अर्जुन को प्यास लगी, तो अर्जुन गए और पानी पीकर लौट के आए, जमुना जी का पानी पीकर लौट के आए। तो भगवान को ऐसा कहते हैं कि अर्जुन ने पानी पिया तो वहाँ पर एक सुंदर सांवले रंग की सुंदर स्त्री को वहाँ पर घूमते हुए देखा, तो कहते हैं उसकी सुंदरता को देखकर उसको कृष्ण की याद आई और भाव विभोर हो गए वो, और ऐसे मतलब कभी आंसू बह रहे हैं, कभी रोमांच हो रहा है, कभी कंठ गदगद हो रहा है, ऐसे अनुभव किया उन्होंने। उन्होंने पूछा तो वापस लौट के आए, भगवान को बताया कि ऐसी ऐसी कोई कन्या वहाँ पर घूम रही है, तो भगवान का जाओ पूछताछ करो कौन है वो, जाते हैं दोबारा पूछताछ करते हैं कि आप कौन हो सुंदरी, आपको ऐसे अकेले में जंगल में घूमते हुए देखकर आश्चर्य हो रहा है, आपका परिचय क्या है, क्या आप किसी वर को ढूंढ रही हो यहाँ पर, अकेले यहाँ पर ढूंढ रही घूम रही हो। तो वो कहती है कि मैं सूर्यपुत्री यमुना हूँ, आप जानते हैं ना सूर्यदेव का उषा के साथ विवाह हुआ और पहले यमराज का जन्म हुआ, उसके बाद यमुना का जन्म हुआ, तो सूर्यपुत्री के रूप में मैं यहाँ पर हूँ, मैं यमुना हूँ, और मेरे पिताजी ने बड़े ही प्रेम से मुझे मेरे ही जल के अंदर एक महल बना दिया है मेरे निवास के लिए, क्योंकि वो जानते हैं, मैंने अपने पिताजी को बता दिया है कि मैं केवल श्री कृष्ण से ही विवाह करूँगी, भगवान विष्णु से ही विवाह करूँगी, जो सब विश्व पर राज करते हैं और ब्रजवासियों को आनंद देते हैं, ऐसे व्यक्ति से मैं विवाह करूँगी, और वो है श्री कृष्ण। और तब तक मैं ये इस महल में रहकर तपस्या करूंगी और इंतजार करूंगी। और मैं आज जानती हूं कि आप अर्जुन हो, आपका भी शरीर कृष्ण जैसा है। देखिए आप, कृष्ण भी सांवले हैं, अर्जुन भी सांवले हैं, जमुना जी भी सांवली हैं। तो आचार्य लिखते हैं कि यहां पर अपने सांवलेपन का एक जाल भगवान ने बिछा दिया अद्भुत तरीके से, अर्जुन और यमुना के रूप में से। तो वो लौट कर आए तो वो जानती थी कि आप अर्जुन हो, बड़े वीर हो, और उसको भैया करके पुकारती है, माय डियर ब्रदर ऐसे पुकारती है। तो तुरंत आप वो जाके भगवान को बताते हैं, भगवान कुछ भी एक मिनट भी विलंब न करते हुए वहां से उठते हैं, सीधे जमुना जी का हाथ अपने हाथ में लेते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। वैसे ही जमुना बेहोश हो जाती है। यू कैन इमेजिन, क्योंकि इतने साल तपस्या कर रहे हैं और अचानक तुम्हारी तपस्या की पूर्ति हो जाती है, अनबिलीवेबली, हाँ, तो बेहोश हो जाती है। तो कैसे भी करके इसको बेहोश अवस्था में अर्जुन और कृष्ण भगवान उठाकर रथ में लाते हैं और द्वारका अपनी हस्तिनापुर की ओर चलते हैं। तो रथ में उसको होश आता है, बड़े आनंद का अनुभव करती हो, और भगवान उसको लेकर कुंती माता को सुपुर्द करते हैं कि इसकी देखभाल करो, आगे का काम कम करते हैं। और उसके बाद में जब वो खांडव उनको जलाते हैं, उस समय वो मैं दानव शरण में आता है अर्जुन के, बाकी सब तो जल जाते हैं, और मैं दानव राक्षस का, राक्षसों का आर्किटेक्ट है वो, जिसने रावण के लिए भी वो सेवा किया, रावण का ससुर है वो, मंदोदरी कन्या है उसकी। तो मैं दानव शरण में आता है तो अर्जुन उसको शरण देते हैं, उसको बचाते हैं। तो वो कहता है कुछ सेवा बताओ आपको, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो विश्वकर्मा ने द्वारा बनाया गया जो बड़ा शहर है, उसके अंदर खांडव वन उसका हिस्सा था, उसके अंदर खांडव वन में उसने मय सभा बनाई युधिष्ठिर महाराज के लिए, राजसभा उसको कहते हैं, मय सभा, जिसमें फिर वो दुर्योधन गिर गए थे ना पांव फिसल कर, जल को भूमि समझा, भूमि को जल समझा, और परेशान हो गए, उसका द्वेष और बढ़ गया, उसका अपराध भी हुआ, द्रौपदी वहां पर हंसी उसके लिए, वो मय सभा उसने बनाया। उसके बाद में फिर भगवान जमुना जी को लेकर द्वारका गए, और द्वारका में जमुना के साथ में बहुत सुंदर उनका विवाह हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तभी चार पत्नियों का विवाह वर्णन हमने किया, अगली चार पत्नियों का विवाह वर्णन और जन्म लीला का वर्णन रात को करेंगे। श्री कृष्ण भगवान की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।